अब आइए प्रार्थना के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, आज रात्रि हम तुझे इस दूसरे सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपकी आराधना करने के लिए आए हैं, जीवित रहने के लिए आपके धन्यवादित हैं और अनंत जीवन के इस महान प्रकाशन के लिए जो कि हमारे अंदर है। और पिता, आज रात्रि हम आए हैं कि मिलकर तेरे वचन का अध्ययन करें, ये महान छिपे हुए भेद जो कि संसार की सृष्टि से छिपे हुए रहे, और केवल मेमना ही है जो इसे हम पर प्रकट कर सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि वो हमारे बीच में आएगा और अपने वचन को लेकर और इसे हम पर प्रकट करे, ताकि हम जान सकें कि हम कैसे उसके अच्छे दास बन सकें इस अंत के समय में। ओ परमेश्वर, जैसे कि हम देखते हैं कि हम अब अंत के समय में हैं, हमें अपने स्थान को जानने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु, और हमारे निर्बल जीव और प्रभु के आने की निश्चितता जल्द है। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ, ये दाऊद ने कहा है, मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम प्रभु के भवन को चलें। आना, ये एक सदा एक महान सौभाग्य रहा है, हमें ये महान आशा दे। अब यहाँ बहुत से खड़े हैं और मैं जितना संभव हो सकेगा जल्द करने का यत्न करूँगा, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आनंद लिया होगा जैसे मैंने इन पिछले कुछ समय में। और आज मेरे पास बहुत कुछ घटित होने के लिए था जो कि बहुत समय से नहीं हुआ था। मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, यहाँ इस प्रकाशन पर, मोहर के खुलने पर। वर्षों पहले मैं इसमें से होते हुए निकला, लगभग 20 वर्षों पहले मैं समझता हूँ, या कुछ इसी प्रकार से। परंतु जो भी था, कुछ भी हो, मैं कभी भी इससे संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ था जो विशेषकर इन मोहरों में, क्योंकि ये मोहरें पूरी पुस्तक है, समझे, ये एक पुस्तक है, समस्त पुस्तक एक ही है, मोहर बंद, ये आरंभ होती है। उदाहरण के लिए यदि यहाँ मेरे पास कुछ था तो मैं आपको दिखाता कि इसका क्या अर्थ है। ये यहाँ एक मोहर है, ये एक है, और आप इसे इस प्रकार से लपेट दें जिस प्रकार ये लिपटा है, और आप इसे इस प्रकार से लपेटें और अंत में एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ है इस प्रकार से, ये पहली मोहर है, ठीक है। फिर ये पुस्तक का पहला भाग है, फिर अगली मोहर इस प्रकार से लिपटी हुई है, ठीक इसके बराबर, और ये यहाँ इस प्रकार से लिपटी हुई है, फिर अंत में ठीक यहाँ दूसरी चिपकी हुई है, जिसका अर्थ दो मोहरें। और इस प्रकार से सारी बाइबल लिखी गई थी खर्रों में, और इस प्रकार से इन मोहरों को तोड़ने के लिए ये पुस्तक के भेदों को खोलता है। क्या आपने यर्मिया को अध्ययन के लिए लिया? उसने ये कैसे लिखा? आप में से बहुतों ने पिछली रात्रि लिखा किस प्रकार से वे मोहरें लिखी गई थीं और रखी गईं, उस समय तक के लिए रखी गईं जब तक कि वो 70 वर्षों तक बंधुआई से वापस नहीं आया। वो वापस आया और अपने स्वामित्व का दावा किया था, और मैं निश्चय ही इसका अध्ययन करना पसंद करता हूँ। आप नहीं सकते, इसे प्रकट करने का कोई विधि नहीं है, क्योंकि ये एक अनंत वचन है और ये एक अनंत पुस्तक है, इसलिए हम बस एक प्रकार से विशेष स्थानों पर ध्यान देंगे। और आज अध्ययन में मैंने बहुत से पवित्र लेख लिखे हुए हैं ताकि आप इसका अध्ययन कर सकें, और ये भी, और टेप, इसका बहुत कुछ प्रकट करेंगे जैसे कि आप अध्ययन करते हैं। और बहुत चीजें हैं, यदि मैं यहाँ मंच पर खड़ा रह सकूं और आप पर इसे प्रकट करूं जिस प्रकार से ये कमरे में मुझ पर प्रकट हुआ, ओह, ये शानदार होगा। परंतु जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आप दबाव में आए और एक प्रकार से आप चीजों पर कूदे और इसके विशेष भाग को लोगों तक पहुँचाएं ताकि वे इसे देख सकें। निश्चय ही मैं उस गाने की सराहना करता हूँ जो भाई अनग्रेन ने अभी गाया, अपनी महिमा से नीचे आया। यदि वो अपनी महिमा से नीचे नहीं आता तो आज रात्रि हम कहाँ होते? इसलिए हम धन्यवादित हैं कि वो हमारी सहायता के लिए नीचे आया। अब बहुत से लोग खड़े हुए हैं और हम जल्दी जल्दी करेंगे जितना अच्छा हमसे हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हम जल्दी जल्दी करने जा रहा हूँ, परंतु मेरा अर्थ है कि मैं जितनी जल्दी हो आरम्भ करने जा रहा हूँ। अब आइए हम निकालते हैं, अब इसके बाद हमने पिछली रात्रि पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा लिया था और आज रात्रि हम छठवां आरंभ कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का। अब जैसा कि हम इस अध्याय में अध्ययन करते हैं, हम विभिन्न स्थानों का उल्लेख कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुराने और नए नियम में एक समान, क्योंकि सारी पुस्तक यीशु मसीह का प्रकाशन है। समझे, ये सारा मिलकर प्रभु यीशु का प्रकाशन है, यीशु मसीह का प्रकाशन। ये परमेश्वर स्वयं को पुस्तक में प्रकट कर रहा है, स्वयं को मसीह में होकर पुस्तक में, और मसीह परमेश्वर का प्रकाशन है। वो परमेश्वर को प्रकट करने आया क्योंकि वो और परमेश्वर एक ही थे। परमेश्वर मसीह में था, संसार को अपने में मिला रहा है। दूसरे शब्दों में, आप कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे जब तक वो स्वयं को मसीह में होकर प्रकट न करे, तब आप देख सकते हैं। वर्षों पहले मैं सोचा करता था, हो सकता है परमेश्वर मुझसे क्रुद्ध है, परंतु मसीह ने मुझसे प्रेम किया है। मालूम पड़ा कि ये एक ही व्यक्ति है, देखा, और मसीह परमेश्वर का हृदय है। और अब जैसा कि हम इसका अध्ययन करते हैं, अब हम इसकी तुलना कर रहे हैं बाइबल की पहली तीन पुस्तकें प्रकाशित वाक्य की, जिनको हमने अच्छी तरह से छाना है, कलीसियाई काल, सात कलीसियाई काल। अब वहाँ सात कलीसियाई काल हैं, सात मोहरें, सात तुरहियें और कटोरे और अशुद्ध आत्माएं, मेंढकों जैसी, और ये सब कुछ साथ साथ जाता है। ओ, मैं इसे कितना पसंद करता हूँ, एक बड़ा नक्शा और इसे पूरे में बनाऊं, जिस प्रकार मैं इसे देखता हूँ। आप जानते हैं कि किस प्रकार हर एक अपना स्थान लेता है। मैंने छोटे से कागज पर इसे चित्रित किया है, परंतु मैं, आप ये जानते हैं कि सारी बातें जहाँ तक सही बैठती हैं, और समय और युगों के साथ जैसा कि वे आए और चले गए, और हर चीज एक दूसरे के साथ सही सिद्ध सामंजस्य में है, इसलिए ये कुल मिलाकर सही नहीं होगा, परंतु ये सबसे अच्छा है जो मैं इस विषय में जानता हूँ, जो भी है। और मैं जानता हूँ, यदि मैं अपना सबसे अच्छा करता हूँ और अपना सबसे अच्छा करने के यत्न में मैं गलती करता हूँ, और सबसे अच्छा जो मैं जानता हूँ, तो निश्चय ही परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा मेरे इस करने को, उस गलती को जो मैंने गलत किया। परंतु अब वे पहली तीन पुस्तकें पहले हैं, सात कलीसियाई काल, और तब हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय में यूहन्ना ऊपर उठा लिया गया। समझे, हम कलीसियाओं को देखते हैं, वहाँ कलीसियाई कालों के लिए बहुत कुछ नहीं कहा गया है। वहाँ जहाँ मैं सोचता हूँ कि लोग अचंभित होने जा रहे हैं, वे कलीसिया को पीड़ा में लगा रहे हैं उन बातों में जो होनी है। और जैसे कि मैंने कल रविवार में कहा, पहली बात जो आप जानते हैं, वे पीड़ाएं आएंगी और आप आश्चर्य करेंगे कि क्यों नहीं, पहला आगमन उठा लिया जाना नहीं हुआ, और ये वैसे ही होगा जैसे ये हुआ, ये हो गया और आप नहीं जान पाए। समझे, अब वहाँ कलीसिया से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं नहीं की गई, अन्य जाति की कलीसिया, दुल्हन से। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने मस्तिष्क में रखें कि एक कलीसिया और एक दुल्हन है। समझे, आपको ये सदा तीन में चलाना है, चार गलत है, तीन, तीन, सात, दस, बारह और चौबीस और चालीस का, पचास, ये बिना टूटी गिनतियाँ। बाइबल और परमेश्वर अपने संदेश अंकों, बाइबल के अंकों में चलाता है, उन अंकों में। आपको वहाँ कुछ ऐसा मिलता है जो नहीं है इन गिनतियों में से, अच्छा हो कि आप ध्यान दें, ये अगली बात पर ठीक नहीं बैठेगा, आपको वहीं वापस आना पड़ेगा जहाँ से आपने आरंभ किया। भाई वाइल, भाई ली वाइल, वो मैं सोचता हूँ वो यहाँ पर हैं। उस दिन हम उन लोगों के विषय में बातें कर रहे थे जो मार्ग से भटक गए, ये निशाने पर गोली दागने के समान है। यदि बंदूक सही ठीक संतुलित है, सिद्ध प्रशिक्षित और दृष्टि में सही से, इसे निशाने पर लगना ही है, जब तक कि नान हिले या घूमे या कंपन ना हटाए, और जहाँ भी, या हवा का झोंका, जहाँ से भी ये आरंभ से अलग हो, करने का केवल एक ही तरीका है कि वहीं वापस जाएं जहाँ से मार्ग से हटे हैं, और फिर से आरंभ करें। यदि ये सही निशाने पर मार करने वाली है, यदि ये नहीं होता, क्यों, ये बस निशाने पर मार नहीं करेगी। और इस प्रकार से मैं विश्वास करता हूँ वचन का अध्ययन करने में है। यदि हम पाते हैं कि हम यहाँ कुछ आरंभ करते हैं और ये ठीक निकल कर नहीं आता, आप देखते हैं ये नहीं है, जी हाँ, हमने कहीं कोई गलती की है, हमें वापस आना पड़ेगा, आप इसे कभी भी अपने मस्तिष्क में आकार नहीं दे पाएंगे। ये बस नहीं, हम बस वचनों के द्वारा पाते हैं। कोई भी मनुष्य न स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे या कभी था या कभी होगा जो ये कह सके, केवल मेमना ही ये कर सकता है। इसलिए धर्म विज्ञान की चिल्लाहटें ये चाहे जो हो सकती हैं, ये कुछ नहीं है, समझे? ये मेमना ही इसे प्रकट करता है, बस कुल मिलाकर यही है। इसलिए हम आशा करते हैं कि वो हमारी सहायता करेगा। यूहन्ना 4 अध्याय में उठा लिया गया कि चीजों को देखे जो थी, जो हैं और जो आने वाली हैं, परंतु कलीसिया 4 अध्याय में समाप्त हो जाती है। मसीह कलीसिया को उठा लेता है उससे मिलने के लिए कि हवा में उठा लेता है, और फिर 19 अध्याय तक नहीं दिखाई पड़ती है। जब वो वापस आता है राजाओं का राजा होकर और प्रभुओं का प्रभु होकर कलीसिया के साथ, और अब ये मैं आशा करता हूँ किसी दिन हम इस सब को लेते हुए निकल सकते हैं। हो सकता है उसके आगमन से पहले, यदि नहीं तो हम इसे देखेंगे, जो भी हो, इसलिए इससे कुछ मतलब नहीं। अब इस 5 अध्याय में इन मोहरों के टूटने में, और अब ये 7 मोहरों की पुस्तक, पहले हम पहले वाली मोहर पढ़ना चाहते हैं। बीते सांझ इसकी भूमिका थोड़ी अधिक रही। हम पाते हैं कि जब यूहन्ना ने देखा और देखा कि पुस्तक अब भी मूल स्वामी के हाथों में है, परमेश्वर के, आपको याद है कि ये कैसे खोई थी आदम के द्वारा। उसने शैतान के ज्ञान के लिए जीवन की पुस्तक खो दी और अपना वारिसाना अधिकार खो दिया, हर चीज खो दी, और छुटकारे का कोई मार्ग नहीं था। तब परमेश्वर मनुष्य की समानता में बन गया, नीचे उतर कर आया और हमारे लिए छुड़ाने के लिए छुड़ाने वाला बन गया। और हम पाते हैं कि बीते दिनों में वे बातें जो भेद भरी और हमारे लिए खोली जानी थी, अंत के दिनों में, इसके अंदर जब हम ये भी पाते हैं कि जैसे ही यूहन्ना ने ये उद्घोषणा सुनी कि छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी सामने आए और अपने दावे करे, वहाँ कोई मनुष्य नहीं था जो ये करे। स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी के नीचे कोई मनुष्य नहीं। पुस्तक की ओर देखने के योग्य कोई नहीं था। इस पर थोड़ा सोचें, कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ तक कि इसकी ओर दृष्टि करे। और यूहन्ना ने रोना शुरू कर दिया, वो जान गया। तो फिर छुटकारे का कोई अवसर ना था, सारी चीजें असफल हो गई थी। और तुरंत ही हम पाते हैं कि उसका रोना रुक गया था, तुरंत ही, क्योंकि चारों में से एक प्राणी के द्वारा ये घोषित किया गया, बल्कि एक प्राचीन के द्वारा। एक प्राचीन ने कहा, मत रो यूहन्ना, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है। दूसरे शब्दों में विजयी और जयवंत हुआ है। यूहन्ना मुड़ा, उसने देखा एक मेमना बाहर आ रहा है, वो लहूलुहान होना चाहिए और कटा और घायल होना, ये घात किया गया था। कहा कि एक मेमना जो घात किया गया था, और इसके चलते वो अब भी लहूलुहान था, यदि आपने मेमना काटा था और इसे इस प्रकार मारा कि ये मेमना था जैसे भी है, इसको क्रूस पर टुकड़े किया गया, पसली में भाला, हाथों और पैरों में कीले, भों के ऊपर कांटे, वो भयानक स्थिति में था। और ये मेमना आया और उसके पास गया जो सिंहासन पर बैठा था, जिसके पास छुटकारे का पूरा अधिकार पत्र था, और मेमना गया और उसके हाथ से वो पुस्तक ले ली जो सिंहासन पर बैठा था और ले ली थी, और मोहरे खोली और पुस्तक को खोला। और तब जब ये घटित हुआ तो हमने पाया वहाँ कोई महान बात स्वर्ग में घटित हुई है, प्राचीनों के लिए और 24 प्राचीन और प्राणी और स्वर्ग में हर चीज चिल्लाने लगी, योग्य है। और यहाँ स्वर्गदूत आते हैं और कटोरों को उंडेल दिया जो संतों की प्रार्थना के थे। वेदी के नीचे के संत लोग चिल्ला उठे, तू ही योग्य है और मेमने, क्योंकि तूने हमें छुड़ा लिया है और अब तूने हमें राजा और याजक बनाया है, और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ओ प्रभु। और ये इस प्रकार से है, जब उसने उस पुस्तक को खोला, अब देखिए वास्तव में पुस्तक योजनाबद्ध थी और संसार के रचने से पहले लिखी गई। ये पुस्तक बाइबल वास्तव में संसार के रचने से पहले लिखी गई और मसीह मेमना होने के नाते संसार के रचने से पहले घात किया गया और उसके दुल्हन के सदस्य उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में सृष्टि के रचने से पहले लिखे गए, परंतु ये मोहर बंद किए गए थे और अब ये प्रकट किया गया है जिनके नाम वहाँ पर थे। इस सब के विषय में और क्या ही महान बात है। और यूहन्ना जब उसने ये देखा, उसने कहा हर चीज स्वर्ग में, हर चीज पृथ्वी के नीचे, हर चीज ने उसे कहते सुना आमीन, धन्य और आदर। वास्तव में उसका ये महान समय था और क्योंकि मेमना ही योग्य था। और अब मेमना खड़ा हुआ है, अब आज रात्रि जैसे कि हम इस छठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, उसके पास ये पुस्तक उसके हाथ में है और इसे प्रकट करना आरंभ कर दिया। और ओ, आज मैंने पूरी रीति से कर दिया होता और मैं आशा करता हूँ कि लोग आत्मिक हैं। इस पर मैं एक भयानक गलती कर देता यदि ये आज 12 बजे के लगभग नहीं हुआ होता, जब पवित्र आत्मा कमरे में आया और मुझे जो बोलने के लिए लिख रहा था उस पर सही नहीं किया होता। मैं इसे पुराने संदर्भ से ले रहा था, इस पर मेरे पास कुछ नहीं था। दूसरी मोहर क्या है मैं नहीं जानता, कुछ नहीं से कुछ अधिक नहीं, परंतु मेरे पास पुराने संदर्भ थे किसी चीज के जो मैंने बहुत वर्षों पहले बोले थे और ये लिखे थे। और मैंने ये संदर्भ डॉक्टर स्मिथ से इकट्ठे किए थे, बहुत से महान जाने माने शिक्षकों के जो मैंने जमा किए थे, और उन सब ने ये विश्वास किया, इसलिए मैंने इसे लिख लिया और मैं इसे कहने के लिए तैयार था। अच्छा, अब मैं इसका अध्ययन करूंगा उस दृष्टिकोण से। और वहाँ लगभग 12 बजे दिन में पवित्र आत्मा कमरे में नीचे उतर कर छा गया और सारी चीज मुझ पर खोल दी और ये वहाँ था, इस पहली मोहर का जो खोली गई। मैं वैसे ही आश्वस्त हूँ जैसे मैं आज रात्रि यहाँ खड़ा हूँ कि सुसमाचार का यही सत्य है जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यही है, क्योंकि यदि प्रकाशन वचन के विरुद्ध है तो फिर यह प्रकाशन नहीं है। और आप जानते हैं इसमें कुछ ऐसी चीज दिखाई पड़ सकती है कि ये बिल्कुल सत्य है और फिर भी ये सत्य नहीं है, समझे? ये ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये, परंतु ये नहीं है। अब हम मेमने को पुस्तक के साथ पाते हैं और अब छठवें अध्याय में हम पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ और देख। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अब ये पहली मोहर है, ये जिसके लिए हम परमेश्वर के अनुग्रह से यत्न करने जा रहे हैं कि आज रात्रि इसकी व्याख्या करें। ये भयानक स्थान पर चलना है यदि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, समझे? इसलिए यदि ये मेरे पास प्रकाशन के द्वारा आया, मैं आपको वैसा ही बताता हूँ। यदि मैं इसे अपने ही मस्तिष्क के द्वारा लेता हूँ तो फिर मैं बात करने से पहले आपको बता दूंगा, परंतु मैं पूरी रीति से आश्वस्त हूँ जैसा कि मैं आज रात्रि यहाँ पर खड़ा हूँ। ये आज मेरे पास बिल्कुल नया आया उस सर्वशक्तिमान के पास से। मैं इस प्रकार की बातें कहने के लिए प्रवृत्त नहीं हूँ जब वचन का ये भाग आता है। मैं आशा करता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं अब किस विषय में बात कर रहा हूँ, आप समझे? अब आप जानते हैं और आप एक भी बात नहीं कह सकते। यदि कुछ मान लिया जाए कि वहाँ पर है, इसके पहले कि ये हो, आप ये नहीं कह सकते जब तक कि ये वहाँ पर हो, समझे? क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप किसी चीज को सुन रहे हैं, समझे? अब सात मोहरों की लिपटी हुई पुस्तक मेमने के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। आज रात्रि हम उस स्थान पर पहुंच करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करना, जैसा कि मोहरें तोड़ी गई और प्रकाशित की गई, पुस्तक के भेद प्रकट हो गए। अब आप देखते हैं ये मोहर बंद पुस्तक है। अब हम इसका विश्वास करते हैं, क्या हम नहीं करते? हम ये विश्वास करते हैं ये मोहर बंद पुस्तक है। अब हमें पहले ये नहीं मालूम था, परंतु ये है, ये सात मोहरों के साथ बंद है, ये पुस्तक के पीछे है, पुस्तक सात मोहरों से बंद है। यदि हम इस प्रकार की पुस्तक के विषय में बात कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार होगा, एक पट्टी उसके आर पार डालना, सात पट्टियाँ, परंतु ये इस प्रकार की पुस्तक नहीं है, ये लिपटा हुआ खर्रा है, और जब ये लपेटा हुआ खोला गया, ये एक है, और उस लपेटे हुए के अंदर नंबर दो है, और ठीक यहाँ ये कहता है जो ये है, परंतु ये एक भेद है, परंतु फिर भी हमने इसकी जांच की है, परंतु स्मरण रखें, पुस्तक मोहर बंद है और पुस्तक प्रकाशन के भेद की पुस्तक है। ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। देखिए, प्रकाशनों की एक पुस्तक, और आप अब ये जानते हैं कि युग में से होते हुए मनुष्य ने इसकी छानबीन की और इसमें घुसने का यत्न किया, हम सबके पास है। और फिर मुझे एक बार याद है कि श्री बोहनन वहाँ पर थे या कुछ लोग, मेरा अर्थ उनका अपमान करने से नहीं है। श्री बोहनन एक प्रिय मित्र और वो एक पब्लिक सेवा में निरीक्षक थे जब मैं वहाँ काम कर रहा था। जब मैं पहले पहल बचाया गया था, मैं उन्हें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पढ़ने के विषय में बता रहा था। उसने कहा, मैंने उस चीज को पढ़ने की कोशिश की। उसने कहा, श्री बोहनन एक अच्छे व्यक्ति थे, वो एक कलीसिया के सदस्य थे, और मैं नहीं जानता कि कुल मिलाकर वो कहाँ से थे, परंतु उसने कहा, मैं सोचता हूँ उस दिन रात्रि के भोज में यहुन्ना ने लाल मिर्च खाई होगी, और भरे पेट के साथ वो पलंग पर चला गया। मैंने उससे कहा, यद्यपि मेरी नौकरी पर बात आ सकती थी, मैंने कहा, क्या आपको ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती? और मैं बस लड़का ही था, परंतु मैंने कहा, क्या परमेश्वर के वचन के विषय में ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती? समझे, फिर भी बालक था, कोई अधिक नहीं, शुरू में हो सकता है 21-22 वर्ष का, और काम कम मिलता और दुख था, परंतु फिर भी वहाँ एक भय था। जब मैं टेढ़ा हो गया, परमेश्वर के वचन के लिए कोई टेढ़ा शब्द सुनता, ये सत्य है, ये सारा का सारा सत्य है, इसलिए ये कोई स्वप्न नहीं या दुःस्वप्न ये नहीं था कि यूहन्ना ने खाया। वो पुत्मस टापू पर था क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पुस्तक के रूप में देने का यत्न किया था, और वहाँ उसे रोमी सरकार के द्वारा निष्कासित किया गया था, और परमेश्वर के दिन वो वहाँ टापू पर था, और उसने अपने पीछे एक आवाज बहुत से पानियों की सुनी, और देखने के लिए घूमा, और उसने सोने के साथ चिरागदान देखे, और वो वहाँ उनके बीच में परमेश्वर के पुत्र को खड़ा देखा। अब और फिर पुस्तक एक प्रकाशन थी, इसलिए प्रकाशन कुछ ऐसा है जो कि किसी चीज को जानना, कुछ ऐसा जो प्रकट किया गया। और अब ध्यान दें ताकि आप इसे भूलेंगे नहीं, ये पिछले समयों तक बंद रही, समझे, और इसका समस्त भेद पिछले समयों तक बंद रहा, ये हम यहाँ वचन में पाते हैं। अब पुस्तक के भेद प्रकट किए गए जब मोहरें तोड़ी गईं, और जब मोहरें पूरी रीति से तोड़ दी गईं, और छुटकारे का समय पूरा हो गया, क्योंकि मेमने ने बिचवाई का मंडप छोड़ दिया और अपना दावा करने को बाहर निकल आया। इसके बीच वो एक मध्यस्थ था, परंतु जब मोहरों पर वास्तविक प्रकाशन घटित हुआ, जैसे कि वे टूटना आरंभ हुए, मेमना पवित्र स्थान से बाहर आता है, ये वचन के अनुसार है, पिछली रात्रि हमने ये पढ़ा है, वो वहाँ से आता है, वहाँ बीच में से, और पुस्तक को ले लिया, इसलिए अब वो और बिचवाई करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने उसे एक सिंह पुकारा, और वो एक राजा है, अब वो बिचवाई करने वाला नहीं है। यद्यपि इन मोहरों के कर्ता पहली कलीसिया युग में आरंभ हो गए थे, अब स्मरण रखें ताकि आपको इसकी भूमिका पूरी रीति से मिल जाएगी, यदि हम सके या पूरी रीति से संभव हुआ। अभिनेता, मैं इसे इस प्रकार से रखूंगा क्योंकि ये एक अभिनेता है, एक मनुष्य है जो मुखौटा बदलता है, समझे, और आज रात्रि इस व्यवहार में हम ये देखने जा रहे हैं, ये एक शैतान है, अपना मुखौटा बदल रहा है और सारे अभिनेता मसीह अपने भाग का अभिनय जो उसने किया जब वो आत्मा से मनुष्य हो गया। उसने केवल अभिनेता का वस्त्र धारण किया, मनुष्य की देह और मनुष्य के रूप में नीचे उतर आया छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी हो जाने के लिए। अब आप देखते हैं ये केवल एक अभिनेता का रूप है। यही कारण है ये सारे दृष्टांत हैं और जिस प्रकार वे यहाँ हैं जैसे प्राणी और पशु आदि आदि ये कार्य है। और ये अभिनेता पहली कलीसियाई युग में आरंभ हो गए क्योंकि ये मसीह स्वयं को सात कलीसियाई युगों में प्रकट कर रहा है। अब आप समझते हैं, ठीक है, समझे, मसीह अपने आप को सात कलीसियाई युगों में प्रकट कर रहा है। तब इन कलीसियाई युगों से होते हुए वहाँ एक बड़ी गड़बड़ी साथ चली। तब कलीसियाई युग के अंत में सातवें दूत का संदेश भेद के खोए हुए सिरों को लिया और कलीसिया को दे दिया, समझे। अब हम इस पर ध्यान देंगे, परंतु तब उनकी सच्ची स्थिति प्रकट नहीं हुई। अब बाइबल के समय में वहाँ भेद थे और उन्होंने ये चीजें घटित होते हुए देखी, जिस प्रकार यहुन्ना ने ये यहाँ देखा। अब उसने कहा वहाँ एक सफेद घुड़सवार है, परंतु उसका भेद क्या है? उस घुड़सवार के साथ वो भेद चलता है। अब ये क्या था? वे नहीं जानते थे, परंतु इसे प्रकट होना था। परंतु जब मेमना पिता का सिंहासन छोड़ता है तो इसे प्रकट होना था, उसकी बिचवाई का एक निकट कुटुंब भी छुड़ाने वाले के समान। मैं यहाँ एक छोटा सा कुछ देना चाहता हूँ। अब यदि कोई इन टेपों को पाता है, कोई भी मनुष्य जो चाहे बोल सकता है, उसका किसी भी चीज के लिए अधिकार है, उसके पूर्ण विश्वास का। परंतु यदि आप जानते हैं, यदि सेवक इसे अपने लोगों के बीच नहीं चाहता तो उन्हें बताता है कि इसे ना लें। परंतु मैं ये उन लोगों के बीच में हूँ जिनके लिए बोलने को मैं भेजा गया हूँ, इसलिए मुझे सत्य क्या है प्रकट करना ही चाहिए, समझे। अब मेमना वहाँ पीछे बिचवाई के समय वो जानता था कि वहाँ उसमें नाम भूमि की उत्पत्ति से पहले लिखे हुए थे, और जब तक वे नाम यहाँ पृथ्वी पर कभी प्रकट नहीं किए गए हैं, अभी तक उसे वहाँ एक बिचवाई करने वाले के समान टिके रहना है। क्या आप समझे? पूर्ण रूप से पहले से ठहराए हुए, समझे, ठीक है, उसे वहाँ रुके रहना ही था क्योंकि वो उनके लिए मरने आया जिनके लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन पहले से ही ठहराया था, समझे समझे। उसने उन्हें अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा देखा, ना कि उसकी अपनी इच्छा के द्वारा। उसकी इच्छा थी कि किसी को भी नष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा वो जान गया कौन होगा और कौन नहीं होगा। इसलिए जब तक वहाँ एक भी नाम नहीं था और अभी तक पृथ्वी पर घोषित नहीं किया गया, मसीह को वहाँ एक बिचवाई करने वाले के समान रुके रहना था कि उस नाम की चिंता करे। परंतु जैसे ही अंतिम नाम उस कोलोरेक्स या ब्लीच में झलकता है, तब उसके बिचवाई करने के दिन समाप्त हो गए। वो जो गंदा गंदा ही बना रहे, वो जो पवित्र है पवित्र बना रहे, समझे। और वो पवित्र स्थान को छोड़ता है और फिर ये न्याय सिंहासन हो जाता है। तब उनके लिए हाय जो मसीह से बाहर हैं। अब ध्यान दें, परंतु ये प्रकट होने हैं जब मेमना पिता के पास से बिचवाई वाला स्थान छोड़ता है। अब ये प्रकाशित वाक्य 5 है। अब वो मोहरों की पुस्तक को लेता है, मोहरों की पुस्तक या एक पुस्तक मोहरों से मोहर बंद है, उन्हें तोड़ता और उन्हें दिखाता है। अब युग के अंत में देखिए, बिचवाई कार्य के पूरा होने के बाद कलीसिया युग समाप्त हो गए। वो भीतर आता है, पहले युग में इफिसियों के युग में प्रकट किया, संदेशवाहक भेजा। ध्यान दें क्या हुआ, जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसकी योजना है। पहली चीज घटित हुई, यहाँ पहले स्वर्ग में एक उद्घोषणा है। क्या हुआ? एक मोहर खुली। ये क्या है? एक भेद खुला, समझे। जब एक भेद खुला तब एक तुरही की आवाज हुई, ये युद्ध की घोषणा करती है। एक संकट आता है और एक कलीसिया युग आरंभ हुआ, समझे। युद्ध का भाग क्या है? कलीसिया का दूत परमेश्वर के भेद को समझाता है। अभी तक पूरा प्रकट नहीं हुआ, परंतु जब वो करता है, वो परमेश्वर के भेद को पकड़ता है और लोगों में जाकर आगे बढ़ता है और उसके भेद दिए जाने के बाद लोगों के पास जाता है। वो वहाँ पर क्या करता है? वो उस संदेश की घोषणा करता है और ये क्या आरंभ करता है? एक युद्ध, एक आत्मिक युद्ध। और फिर परमेश्वर अपने संदेश वाहक को युग के चुने हुओं के साथ ले लेता है और उन्हें सोने के लिए लिटा देता है और फिर उन पर जिन्होंने अस्वीकार किया संकट डालता है। ये अस्थायी न्याय है और ये पूरा होने के बाद तब ये आगे बढ़ता है और वे प्रभुता करते हैं और नामधारियों को भीतर लाते हैं और उस मनुष्य के कार्य को आरंभ करते हैं जैसा वैसली के और उन सब बाकियों के, और फिर इस सब में फिर गड़बड़ हो जाती है और फिर दूसरा भेद आता है। तब क्या होता है? दूसरा संदेशवाहक पृथ्वी पर आता है एक कलीसिया युग के लिए, समझे? तब वो आता है, वो तुरही फूंकता है, वो युद्ध घोषणा करता है, समझे? और फिर क्या होता है? और फिर अंत में वो ले लिया जाता है और तब जब वो सो जाता है तब संकट आता है, उन्हें नष्ट कर देता है। कलीसिया में आत्मिक मृत्यु आती है, वो चली गई, वो वाला झुंड। फिर ये दूसरे वाले के पास चला जाता है। ओ, ये एक महान योजना है। जब तक अंतिम दूत नहीं आता, अब उसके पास विशेष भेद नहीं है, परंतु वो उन सब को जमा करता है जो दूसरे युगों में खो गए थे, सारे सत्य जो अभी तक सही प्रकट नहीं हुए। देखिए, जैसा कि प्रकाशन आता है तब वो उन बातों को अपने दिन में प्रकट करता है। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो ये वहाँ पर है, प्रकाशित वाक्य 10:1-4, आप इसे पाएंगे। ठीक है, समझे? पुस्तक को लेता है मोहरों की और उन्हें तोड़ता है और सातवें दूत को दिखाता है। केवल इसके लिए परमेश्वर के भेद सातवें दूत की सेवकाई है। अब हम कलीसियाई कालों से होते हुए आते हैं यहाँ तक कि इतिहास के साथ और सिद्ध करते हैं, समझे? ये सातवीं कलीसिया के दूत का संदेश है। ठीक है, बीते समय के सारे भेदों को प्रकट करता है, बीती हुई सारी बातों को प्रकाशित वाक्य 10:1-7, यही होना है। अब स्मरण रखें, सातवें दूत के शब्द देने के दिनों में सुसमाचार की तुरही को फूंकता है, उसे परमेश्वर के सारे भेद समाप्त करने हैं। जैसे कि प्रारंभिक कलीसिया में आता है, इसे हम थोड़ी देर के बाद लेंगे, एक शिक्षा, और फिर यह चलन में आ जाती है, फिर एक मत, फिर अध्यादेश हो जाता है, फिर एक कलीसिया बन जाती है अंधेरे युगों में होते हुए। तब अंधेरे युगों से होते हुए पहला सुधार आता है, मार्टिन लूथर, और वो अपने साथ सब प्रकार के भेदों की बातें लाया जो कलीसिया युगों के चलते हुए घटित हुई, वो सब जो पीछे हुआ, परंतु उसने इसे कभी भी समाप्त नहीं किया। तब साथ साथ वैसली आता है पवित्रीकरण के साथ, इसके साथ कुछ और के साथ, अब भी कभी समाप्त नहीं किया। हर जगह कुछ कुछ गुत्थियां छोड़ दी, जैसे कि बपतिस्मे की जगह छिड़काव, और लूथर ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा लिया बजाय प्रभु यीशु मसीह के, ये सारी विभिन्न बातें। तब पेंतिकोस्तल युग आता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ, इस पर अध्यादेश बना दिए, अब वहाँ और युग नहीं हो सकते थे, बस यही था, ये फिलेडेल्फिया था, या अब ये लुदेशियन युग है। परंतु तब हम वचन के अध्ययन में पाते हैं कि संदेशवाहक ठीक युग के अंत में आता है। हर बार पौलुस युग के अंत में आया, हम पाते हैं कि इरिनियस युग के अंत में आया, मार्टिन युग के अंत में, लूथर कैथोलिक युग का अंत, और क्या वैसली लूथर युग के अंत में, और पेंतिकोस्तल पवित्रीकरण के अंत में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर, और पेंतिकोस्तल युग के अंत में वचन के अनुसार हमें मिलना चाहिए। आपको दिखाने के लिए आज रात्रि परमेश्वर मेरी सहायता करे, इसमें से होते हुए जो हमें देखना है, एक दूत को लेना है जो सारे छुटे हुए सिरों को लेगा और परमेश्वर के सारे भेद को खोल देगा कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए। और फिर सात भेद भरे गर्जन आ रहे हैं, ये तो इसमें लिखे भी नहीं है, ये ठीक बात है, और मैं विश्वास करता हूँ कि वे सात गर्जने अंत के दिनों में प्रकट होंगी ताकि दुल्हन को उठा लिए जाने के विश्वास में जमा करे, क्योंकि जो कुछ इस समय हमारे पास है हम इसे करने के योग्य नहीं होंगे। वहाँ कुछ है हमें कदम भर के आगे बढ़ना है। हम दिव्य चंगाई के लिए पर्याप्त विश्वास प्राप्त कर सकते हैं कठिनाई से। हमें बदल जाने के लिए पर्याप्त विश्वास प्राप्त करना है एक क्षण के अंदर, और इस पृथ्वी से एकदम बाहर निकल जाना है, और हम थोड़ी देर के बाद पाएंगे। प्रभु ने चाहा तो ढूंढते हैं ये कहाँ लिखा है। तब दुष्ट कार्य करने वालों का सारा न्याय, अब देखिए, इनके युगों में से होते हुए मोहरें टूट रही हैं। अब तक अंतिम मोहर तोड़ी गई, और अब जैसे वे इन मोहरों पर ध्यान दे रहे थे और बस मान रहे थे कि वे क्या कर रहे थे, अब युगों के अंत में कलीसिया युगों के ये सारे दुष्टता करने वाले दुष्टता करेंगे और संकट की ओर बढ़ते जाएंगे। सात मोहरों के दुष्टता करने वाले जो कलीसिया में भेद भरी रीति पर कार्य कर रहे हैं, और हम इसे एक मिनट में पाएंगे, यहाँ तक कि कलीसिया के नाम कार्य किए, उन्होंने अपने आप को कलीसिया कहा, और आप देखते हैं यदि ये ठीक नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं मैं नामधारियों के इतना विरुद्ध हूँ, न जानते हुए क्यों, समझे। वे समाप्त होते गए, अब ये कोमल रूप में आरंभ होता है और खराब होता जाता है, जब तक कि और लोग इसमें चले जाते हैं कहते हुए ओ हाँ ये बहुत अच्छा है, परंतु अंत के दिनों में ये चीजें पता चल जाएंगी, और अंत में वे इतने खराब हो जाते हैं जब तक कि वे अंत में क्लेश के समय में नहीं चले जाते। और कैसे एक मनुष्य ये कह सकता है कि मसीह की दुल्हन क्लेशों में जाती है, मैं इसे नहीं समझ सकता, समझे। वो क्लेशों में से निकाल ली गई, यदि कलीसिया का न्याय हुआ है और उन्होंने अपने आप को जांच लिया और लहू को स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर कैसे मनुष्य को जांच सकता है जो कि सिद्ध है, बिल्कुल पाप रहित। आप कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हर नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, सच्चा विश्वासी सिद्ध है, परमेश्वर के सामने बिना पाप के है। वो अपने कार्यों में विश्वास नहीं कर रहा है यीशु के लहू में कि उसका प्रायश्चित उसमें डाल दिया गया है। बाइबल ऐसा कहती है, समझे। वो जो परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं करता, क्योंकि वो पाप नहीं कर सकता। कैसे आप एक मनुष्य को पापी ठहरा सकते हैं जबकि यीशु मसीह के लहू का ब्लीच उसके और परमेश्वर के बीच में है। वो पाप को तब तक विघटित करता है जब तक कि उसमें कुछ भी ना बचे, समझे। कैसे मसीह का शुद्ध लहू पाप को उसमें से निकल जाने दे सकता है, वो नहीं सकता। यीशु ने कहा इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा पिता स्वर्ग में सिद्ध है। और यहाँ तक कि हम अपने विचारों को भी कैसे आरंभ कर सकें कि सिद्ध होने जा रहे हैं, परंतु यीशु ने यही मांग की है, और यदि यीशु की मांग है तो उसे इसके लिए मार्ग बनाना है, और उसने बनाया उसका अपना लहू। अब सब प्रकट होता है, सारे भेद जो बीते समय में थे, अब विचार यहाँ अंत समय में है कि वे भेद जो पिछले लंबे समय में आरंभ हुए और कलीसिया कालों में से होते हुए निकले, यहाँ प्रकट हुए इन मोहरों के टूटने में, यहाँ इन अंत के दिनों में, उस समय जब बिचवाई का समय समाप्त होने पर है, उस समय में तब न्याय उनकी प्रतीक्षा करता है जो पीछे हैं, वे बढ़ते हुए इसमें जाते हैं। ये जब दुल्हन दृश्य में से उठा ली जाती है, आइए हम जरा वचन को पढ़ते हैं। अब आप कुछ वचनों को लिखना चाहते हैं, आइए दूसरा थिस्सलुनीकियों को लेते हैं एक क्षण के लिए और एक मिनट के लिए, यहाँ देखें। ये यहाँ ऐसा सुंदर चित्र है, मुझे ये पसंद है, और आइए देखें। जी हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों, और मैं दूसरा अध्याय दूसरे थिस्सलुनीकियों का चाहता हूँ, और सातवां पद, आइए देखें, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7। मैं सोचता हूँ कि ये सही है, अब मैं इसे लिख रहा था कांपते और थरथराते हुए, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। कौन वो जो रोकने वाला है, समझे। एक भेद, अधर्म का भेद, वहाँ पीछे पहले ही कलीसिया युग में, यहाँ यहाँ पौलुस लिख रहा है, ये कह रहा है अधर्म का भेद। अधर्म क्या है? अधर्म कुछ ऐसा जो आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, और जैसे भी हो आप ये करते हैं। और पौलुस ने कहा आज पृथ्वी पर इसी प्रकार से है अधर्म के कार्य। ओ यदि आप हम इसे लेने जा रहे हैं, आइए हम उस भाग को पढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आगे आरंभ करते हैं। तीसरा पद, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ये ठीक बात है। जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। पापों की क्षमा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? मैं चाहूँगा कि उसकी कुछ शिक्षाओं को जानूं, क्या आप नहीं चाहेंगे? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो। देखिए, तब नहीं परंतु उसी के समय में, उस मोहर के टूटने में। देखिए, हम जान जाएंगे कि सही में ये क्या था। ये अधर्म का मनुष्य कौन है? ये पाप का पुरुष कौन है? ये व्यक्ति जो अधर्म का कार्य कर रहा है, परंतु वो अपने ही समय में प्रकट होगा, क्योंकि अधर्म का भेद करता है, काम कर रहा है। धोखेबाज, आप देखते हैं, लोगों को धोखा देकर किसी चीज में ले जा रहा है। देखिए, केवल वो परमेश्वर जो उसे रोके रखेगा जब तक वो कलीसिया मसीह, वो दुल्हन मार्ग से न हटा ली जाए, और तब वो दुष्ट प्रकट होना है। मोहर के टूटने पर उसके समय में, पौलुस ने कहा मेरे समय में नहीं, परंतु उस समय में जब वो प्रकट होगा, समझे, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की आत्मा से मार डालेगा। हम इसे थोड़ी देर के बाद लेने जा रहे हैं, अपने मुंह के आत्मा से। ध्यान दें, ये क्या है? और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार। वो एक मनुष्य जिसका कार्य करना शैतान के कार्य के अनुसार, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और सब प्रकार के अधर्म के धोखे के साथ, अधर्म के द्वारा लोगों को धोखा दे रहा है, उनमें से जो नाश होने वाले हैं, ना कि ये दुल्हन, उनमें से जो इस प्रकार की चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। और मसीह सत्य है और मसीह वचन है, परंतु बजाय इसके उन्हें मत्सार चाहिए। ओ समझे, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। इसका अनुवाद ऐसा होना चाहिए जैसे कि मैंने लेक्सिकन में देखा है, वो झूठ, ना कि झूठ, विशेष झूठ। यही उसने हवा को बताया, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। क्या ही वक्तव्य है! ओ दुल्हन के उठा लिए जाने के बाद तब ये पाप का पुरुष स्वयं को प्रकट करता है। देखिए, मसीह की सच्ची दुल्हन हर कलीसिया युग से चुनी गई है। अब उस दिन मैंने एक वक्तव्य दिया, दुल्हन घर जा सकती है और आपको इसके विषय में कुछ भी नहीं पता लगेगा। ये सही बात है। किसी ने कहा, भाई ब्रणम, ये बहुत ही छोटा झुंड होगा। यीशु ने कहा जैसा ये नूह के दिनों में था। अब आप उससे इस विषय में बात करते हैं, जबकि 8 प्राण जल के द्वारा बचा लिए गए, इसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र के आगमन में होगा। यदि वे आज रात्रि 800 उठा लिए जाएं, तो कल उनके लिए एक भी शब्द नहीं सुनेंगे, यानी अगले दिन का, किसी भी समय। वे चले भी गए और आप इसके विषय में कुछ भी नहीं जान सके। देखिए, ये बिल्कुल ऐसी ही चीज होगी। मैं क्या कहने का यत्न कर रहा हूँ, मैं आपको डराने या चिंता में डालने का यत्न नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें, तैयार हो जाएं, हर मिनट ध्यान करें, अपनी निर्थक बातें छोड़ दें, बस परमेश्वर के साथ व्यस्त रहें, क्योंकि ये आपके सोचने से पहले है। अब आपको स्मरण है वो सच्ची दुल्हन, अब वहाँ एक झूठी दुल्हन है जिसे हम प्रकाशित वाक्य 17 में पाते हैं। उसने कहा, मैं एक विधवा हूँ और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आप देखिए, बैंगनी रंग का वस्त्र आदि, बल्कि पशु। अब परंतु सच्ची दुल्हन हजारों हजार गुना लोगों से बनाई जाएगी, परंतु ये हर एक कलीसिया युग से चुनी हुई होगी। हर बार एक संदेश आया और लोगों ने इसका विश्वास करके ग्रहण किया उस उजियाले में जो था, और जब वे मोहर बंद हो गए उस छुटकारे के दिन तक के लिए। क्या यीशु ने ये बात नहीं सिखाई जब उसने कहा, सातवीं घड़ी में आवाज आई, ये अंतिम कलीसियाई काल है, समझे, और कहा, देखो दूल्हा आता है, उससे मिलने को बाहर आ जाओ। और तब सोने वाली कुंवारी आती है और अपने आंखें मलती है और कहा, मेरे पास भी कुछ तेल होना चाहिए, इसलिए अच्छा होता कि आपके पास भी कुछ होता। और वास्तविक सच्ची दुल्हन वहाँ पर खड़ी है, कहा, हमारे पास बस हमारे लिए ही पर्याप्त है, ओ हमारे पास अपने लिए इतना ही है कि प्रवेश कर लें, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो प्रार्थना करो। और जब वो चली गई तो दूल्हा आ गया और दुल्हन अंदर चली गई, और फिर बाकी लोग रह गए, वे जो पूरी रीति से पवित्र थे। कलीसिया बाहर छूट गई और उसने कहा, वहाँ रोना और विलाप और दांतों का पीसना होगा। देखिए, अब ये चुने हुए हैं, और जब आवाज आती है, दूल्हा आता है, तब हर एक जो सोया हुआ था इनके पीछे के युगों में, हर एक जाग गया। देखिए, ये परमेश्वर नहीं है जैसा कि हम सोचते होंगे कि इस युग के जो कुछ हजार लोग उसे खोजने जा रहे हैं और उन्हें ले लिया। ये हर काल के चुने हुए लोग, और यही कारण है मसीह बिचवाई वाले स्थान पर पीछे वहाँ एक बिचवाई करने वाले के समान, जब तक कि अंतिम काल का अंतिम वाला भीतर ना आ जाए। और फिर ये प्रकाशन जो कि लोगों के ऊपर प्रकट किया गया, और वे देखते हैं कि क्या घटित हुआ, समझे। अब आपको समझ में आया, ठीक है। ध्यान दें, बाकी मरे हुए कलीसिया के सदस्य हजार वर्षों तक ना जी उठे, जब तक कि हजार वर्ष नहीं बीत गए। कलीसिया के सदस्य वे मसीही कलीसिया जब तक हजार वर्ष ना बीत गए जी नहीं उठे, और फिर वे दुल्हन के सामने खड़े होने को आते हैं। ये ठीक बात है, और राजा और रानी के सामने खड़े होते हैं, महिमा हो। आज कुछ कलीसियाएं अपने को स्वर्ग की रानी कहती हैं। स्वर्ग की रानी मसीह की चुनी हुई दुल्हन है, और वो उसके साथ आती है। डेनियल ने उसे देखा और कहा, 10,000 10 गुना उसकी सेवा कर रहे हैं। अब यदि आप वचन में ध्यान देंगे, वहाँ डेनियल में न्याय तैयार था और पुस्तकें खोली गई थीं। अब याद रखें, जब वो आता है तो वो अपनी दुल्हन के साथ आता है, पत्नी अपने पति की सेवा करती है, और 10,000 गुना 10,000 हजारों उसकी सेवा करते हैं। न्याय तैयार है और पुस्तकें खोली गई थीं, और एक और पुस्तक खोली गई जो कि जीवन की पुस्तक है, ना कि दुल्हन, बिल्कुल नहीं। वो तो ऊपर चली गई और वापस आई, और वो वहाँ उन पीढ़ियों के न्याय पर खड़ी है जिन्होंने सुसमाचार संदेश को स्वीकार नहीं किया। क्या यीशु नहीं कहता, दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ अपने दिनों के न्याय में उठ खड़ी होगी और इस पीढ़ी को दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो संसार के दूसरे सिरे से सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनने आई, और यहाँ सुलेमान से भी बड़ा है। वहाँ न्याय में खड़ी हुई दक्षिण की शीबा की रानी वहाँ न्याय में खड़ी है, और उसकी अपनी गवाही, यहाँ तक कि उस पीढ़ी के साथ यहूदी भी नहीं आए जो यहूदी थे, और वे अंधे थे और उससे चूक गए, क्योंकि वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु वह इतनी साधारणता में आया कि उनके ऊपर से निकल गया इस प्रकार से, और वहाँ उस महान रानी ने अपने आप को नम्र किया और आकर संदेश को ग्रहण किया, और वो न्याय में खड़ी होगी, उसने कहा और उस पीढ़ी को दोषी ठहराया। अब आप सदा तीन वर्गों को देखते हैं, वो पुस्तक मरेओं का न्याय हुआ, दूसरी पुस्तक जीवन की पुस्तक, वे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में था वे कहते हैं यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है ये ठीक है। ओ नहीं श्रीमान, देखिए यहूदा का नाम जीवन की पुस्तक में था, अब वे कहते हैं ये गलत है। यीशु मत्ती 10 में उन्हें प्रेत आत्मा को निकालने के लिए सामर्थ्य देता है और बीमारों को चंगा करने के लिए भेज देता है और कोढ़ियों को शुद्ध करने और मरुओं को जिलाने, और वे चले गए और वापस आए, यहूदा उनके साथ था। उन्होंने प्रेतों को निकाला और सब प्रकार के आश्चर्य कर्म किए और वापस आए और कहा यहाँ तक कि शैतान हमारे बस में है। यीशु ने कहा आनंदित मत हो क्योंकि शैतान तुम्हारे वश में है, परंतु आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और यहूदा उनके साथ था। परंतु क्या हुआ, परंतु जब ये चुने हुए झुंड पर आता है कि पेंतिकोस्तल तक पहुँचे और वास्तव में पवित्र आत्मा ग्रहण करें, यहूदा ने अपने रंग दिखा दिए, वो वहाँ न्याय में होगा। इसलिए पुस्तकें खोली गईं और एक पुस्तक जीवन की खोली गई थी, और हर मनुष्य का न्याय इस प्रकार हुआ। अब दुल्हन वहाँ मसीह के साथ खड़ी है कि संसार का न्याय करे। क्या पौलुस कहता है, आप साहस करते हैं, दुल्हन से बातें कर रहा है, एक दूसरे से किसी भी प्रकार की शिकायत है तो तुम अधर्म की व्यवस्था के पास जाओगे? क्या तुम नहीं जानते संत लोग पृथ्वी का न्याय करेंगे? समझे, आप यही हैं, संत लोग पृथ्वी का न्याय करने जा रहे हैं और इसे लेने जा रहे हैं, ये ठीक बात है। कहते हैं संसार में कैसे ये छोटा सा झुंड हो सकता है, मैं नहीं जानता कि ये कैसे होने जा रहा है, परंतु उसने कहा ये होने जा रहा है, इसलिए ये बस तय हो गया जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब देखिए, अब ध्यान दें, बाकी मरे हुए कलीसिया के सदस्य, कलीसिया के मरे हुए सदस्य हजार वर्षों तक फिर ना जिए, और तब हजार वर्षों के बाद ये एकत्र किए गए, दूसरा पुनरुत्थान आया और वे एकत्र किए गए। और मसीह और कलीसिया दुल्हन, ना कि कहलाने वाली कलीसिया दुल्हन, मसीह और रानी, ना कि कहलाने वाली कलीसिया, मसीह और दुल्हन वहाँ खड़े हुए और वे अलग किए गए भेड़ बकरियों से, ये ठीक बात है। वहाँ कलीसिया के सदस्य आते हैं और यदि वे सत्य को सुनते और सत्य को अस्वीकार कर दिया तो फिर क्या कहा जाए, जबकि बड़ी चीज कनवास आर पार फैला हुआ है, जब आपके अपने विचार वहाँ होंगे, इस विषय में आपने क्या सोचा, आप इससे कैसे बचने जा रहे हैं, और ये ठीक आकाश के कैनवास पर है और परमेश्वर का महान टेलीविजन वहाँ पर, ये आपके अपने विचार विरोध में, आपके अपने विचार उस घड़ी में आपके विरुद्ध बोलेंगे। इसलिए आप एक बात बोलते हैं और दूसरा सोचते हैं, तो अच्छा है कि आप इसे रोक दें, अपने विचार परमेश्वर पर ले आएं, इन्हें शुद्ध रखें और इसी के साथ बने रहें और सारे समय वही बात बोलते रहें, समझे? मत कहिए मैं कहूंगा, मैं इसका विश्वास करूंगा, परंतु मैं जाकर मालूम करूंगा, आप इसका विश्वास करेंगे, आमीन। ध्यान दें, इस प्रकार के इसी कारण वे मर गए, वे शुद्धिकरण की परीक्षाओं में से होकर निकले, क्लेशों में से, क्योंकि वास्तव में वे लहू के नीचे नहीं हैं, वे दावा करते हैं कि वे हैं, परंतु वे नहीं हैं। वे पवित्र होने के लिए कैसे परीक्षाओं में होकर निकलेंगे, जबकि वहाँ जब यीशु मसीह का लहू ब्लीच पाप के हर लक्षण को और हर चीज को आपसे दूर ले गया, और आप पहले ही मरे हुए हैं और आपका जीवन उसमें छिपा हुआ है परमेश्वर के द्वारा, और उसमें पवित्र आत्मा के द्वारा मोहरबंद है, तो आपका न्याय किस चीज का होगा? आप अपना पवित्रीकरण कहाँ से पाने जा रहे हैं? आपके पास पवित्र करने के लिए क्या है, जबकि आप सिद्धता के साथ मसीह में हैं, बिना पाप के कैसे, किस बात का न्याय? परंतु ये सोने वाला झुंड है, वे लोग जो नहीं कर सके, अब उन्होंने ये वर्षों से नहीं किया, आप देखते हैं, परंतु ये प्रकाशन की घड़ी है, देखिए देखिए प्रकट हो रहा है दुल्हन के आने पर, अंतिम बार समेटना, अंतिम चीजें आ रही हैं, मित्रों ये अंत पर आ रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। कब मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु कुछ भी, मैं आज रात्रि ऐसे जीवित रहना चाहता हूँ जैसे यदि ये आज रात ही है। मैं तैयार रहूंगा, समझे? वो आज रात्रि आ सकता है तो भी, हो सकता है 20 वर्षों तक ना आए, मैं नहीं जानता वो कब आएगा, परंतु ये जब भी है, हो सकता है मेरा जीवन पूरा हो जाए आज रात्रि, और फिर जो कुछ भी मैंने यहाँ किया उस घड़ी वो पूरा हो गया। मैं उससे न्याय पर मिलने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से मैंने यहाँ जीवन बिताया, जिधर की ओर पेड़ झुकता है उधर की ओर वो गिरता है। याद रखें, जब वे तेल खरीदने गए, वे ओ आप कहते हैं, एक मिनट रुकिए भाई ब्रैनम, मैं इस विषय में नहीं जानता, वे कब तेल खरीदने गए? जब वे वापस आए, दुल्हन जा चुकी थी और द्वार बंद हो गया था, और उन्होंने खटखटाया और कहा हमें अंदर आने दो, परंतु वे बाहर अंधकार में थे। अब यदि आप इसकी प्रतिछाया चाहते हैं, अब देखिए, नूह के समय में यीशु ने इसका उल्लेख दिया है। अब नूह के समय में वे नाव में चले गए, परंतु वे न्याय के समय में ले जाए गए थे, परंतु ये मसीह की दुल्हन की प्रतिछाया नहीं है, हनोक दुल्हन की प्रतिछाया है। हनोक, नूह दुल्हन से होकर गया, क्लेश के समय से होकर निकला और दुखी हुआ, पीने वाला हो गया और मर गया, परंतु हनोक परमेश्वर के सम्मुख चलता रहा। उसके पास 500 साल की गवाही थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया उठा लिए जाने वाले विश्वास से, और बस सीधा चलता चला गया और आकाश में से होकर निकल गया, मृत्यु को बिना चके घर को चला गया, बिल्कुल कभी नहीं मरा। ये प्रतीक है, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, रुके रहेंगे या अवरुद्ध, वे लोगों का वही प्रतीक जो सोए हुए हैं, जो मनुष्य की आयु के आधार पर सो गए, मनुष्य आयु की स्थिति, वे वहाँ पीछे मर गए, परंतु वे मरे हुए नहीं हैं, वे सो रहे हैं। आमीन, वे सो रहे हैं, मरे नहीं हैं। केवल एक ही चीज की आवश्यकता है कि दूल्हा उन्हें जगा दे। जी हाँ, और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, जो सोए हुओं से उनसे आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ मिलकर उठा लिए जाएंगे और प्रभु से हवा में मिलेंगे, और बाकी मरे हुए हजार वर्षों तक जीवित न रहे, अब वही हैं, वे क्लेश में उस समय अवधि से होकर निकले। ये क्या था? जैसे हनोक, आप जानते हैं, नू ने हनोक पर अपना ध्यान रखा, क्योंकि जब हनोक नहीं मिला वो जान गया कि न्याय समीप है, वो नाव के आसपास रहने लगा, परंतु नू ऊपर नहीं गया, वो थोड़ा सा ही उठा और क्लेशों के ऊपर रहा, वो क्लेश की समय अवधि में होकर निकला था, समझे, कि मृत्यु से मरे, समझे, परंतु नू इसमें होकर निकला। हनोक बिना मृत्यु के बदल गया, कलीसिया का एक प्रतीक, वे जो सोए हुए थे उनके साथ उठा लिया गया कि प्रभु से हवा में मिले, और बाकी कलीसिया क्लेश के काल में से होकर निकली। इसमें कुछ और नहीं हो सकता, मेरे अपने से हनोक उठा लिया गया, कोई मृत्यु नहीं। अब आइए थोड़ा सा अध्ययन करें, अपने पाठ पर आ जाएं, मैं इसी पर चलता रहूंगा, हम इस पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे इस मोहर पर। अब ध्यान दें, आइए इसे लें, क्योंकि हम इसे साथ साथ लेंगे, हो सकता है आने वाली रात्रि में या अगली रात्रि तुरई को लें, अब और तब, क्योंकि तुरई ही उस समय बजती है जब मोहरें, ये बस वही चीज है, कलीसिया का खुलता है, बस वही चीज, समझे। अब तुरई सदा युद्ध को सूचित करती है, या फिर राजनीतिक उथल पुथल, तुरही राजनीतिक उथल पुथल करती है जो युद्ध का कारण है। जब आप राजनीतिक गड़बड़ी पाते हैं और सब कुछ गड़बड़ होता है, जैसा हमने अब लिया, देखिए युद्ध होने वाला है, परंतु देखिए राज्य अब भी शैतान का है, ये भाग अब भी उसी के हाथ में है, क्योंकि क्यों ये मसीह के द्वारा छुड़ाया गया, परंतु वो छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी वाला भाग कर रहा है, अपने लोगों को ले रहा है, जब तक कि अंतिम वाला नाम जो जीवन की पुस्तक में लिखा है वो इसे पहले ही ले चुका है और मोहर बंद किया गया है। अब क्या आप इसे समझ गए? तब वो अपने सिंहासन पर से आता है, अपने पिता के सिंहासन से आगे चलकर आता है, परमेश्वर के हाथ से पुस्तक लेता है सिंहासन से, और अपने अधिकार का दावा करता है। पहली चीज जो वो करता है, अपनी दुल्हन को बुलाता है। आमीन। तब अगला क्या लेता है? वो अपने शत्रु को लेता है, शैतान को, और उसे बांधता है और वहाँ उसे आग में डाल देता है उसके सारे अनुयायियों के साथ। अब याद रखें, ये रूस नहीं था, नहीं, मसीह विरोधी, शांत है। ध्यान दें ये कितना शांत है। अब वो तेज है। जी हाँ श्रीमान, जरा पवित्र आत्मा को लें। केवल एक चीज है उसे हरा सकती है। ध्यान दें, तुरई का अर्थ राजनीतिक उथल पुथल युद्ध। मत्ती 24 ने इसके लिए बोला है। उसने कहा तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। देखिए, चारों ओर सारे में आपको स्मरण है यीशु ये बोल रहा है, लड़ाइयां, अफवाहें और युद्ध और अफवाहें और युद्ध, इस प्रकार से अंत तक। अब ये तुरई का शब्द है। अब जब हम तुरइयों पर आते हैं, हम वहाँ वापस जाएंगे और हर युद्धों को उसमें लेंगे और आपको दर्शाएंगे कि वे कलीसियाओं के पीछे पीछे हुए। दिखाते हैं कि ये मोहरों के पीछे हुए, लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें, परंतु तुरही राजनीतिक उथल पुथल को सूचित करती है। जबकि मोहरें धार्मिक उथल पुथल करती हैं, समझे? एक मोहर खुली, एक संदेश आया, और फिर कलीसिया सदा अपने राजनीतिक ढंग से स्थिर हो गई, और जो कुछ भी और इसके सारे मान्य लोग। और जब वास्तविक संदेश आता है, वो संदेश वाहक आगे बढ़ता है, वो हिलाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये ठीक बात है, ये धार्मिक उथल पुथल है जब मोहर खुलती है। यही जो घटित हुआ। जी हाँ, जी हाँ, वे सारे संयोन में शांति के साथ हैं। कलीसिया पूरी रीति से व्यवस्थित हो गई है। हमें ये सब बना हुआ मिला, जैसे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड, वे सारे व्यवस्थित हो गए थे। कैथोलिक कलीसियाएं सारी स्थिर हो गईं, और फिर लूथर आता है तो वहाँ धार्मिक अशांति थी। जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही थी। ठीक है, कलीसिया ज्विंगली के साथ चली गई और ज्विंगली से अलग भागों में और कॉल्विन में, और कुछ समय बाद एंग्लिकन कलीसिया स्थिर हो गई। ये बहुत ही सरल था। और फिर वेस्ली आता है, वहाँ धार्मिक अशांति थी। ये ठीक बात है, ये सदा धार्मिक उथल पुथल को सूचित करता है। अब मोहर, आइए अब हम इसे थोड़ा सा पढ़ें। मैं इसे लेना चाहता हूँ, हम इसे पढ़ेंगे। मैं बातें करने लगा। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मोहरों में से एक को खोला। क्या हुआ? और मैंने सुना जैसे कि एक गर्जन का शब्द था। ओ, मैं कितना चाहता हूँ कि इस पर कुछ मिनटों के लिए ठहरूं। और अब मैं आशा करता हूँ कि वे लोग जो इन चीजों को जानते हैं और प्रभु की स्वांतना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब गहराई से अध्ययन करेंगे, और टेपों पर भी, कि आप इस पर सोचेंगे। पहली चीज घटित हुई, वो मेमने ने वो पहली मोहर तोड़ी, एक गर्जना हुई। अब ये महत्वपूर्ण है, इसमें ये अर्थपूर्ण है, इसका एक अर्थ है, इसका अर्थ है, बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। ठीक है, एक गर्जन, एक गर्जना हुई। अचरज है कि वो गर्जन क्या चीज थी। आइए थोड़ा सा पढ़ें, आइए मती को निकालें, नहीं, आइए संत यहुन्ना पहला लें। संत यहुन्ना 12वां अध्याय, इसे एक मिनट रोके रखें। संत यहुन्ना 12वां अध्याय, अब 23वें पद से आरंभ करके संत यहुन्ना का 12वां। अब यहाँ सुने, अब बहुत ध्यान से, तब आपको और अधिक अचरज नहीं होगा कि ये क्या है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। देखिए, यहाँ आप युग के अंत पर हैं, उसकी सेवकाई समाप्त हो रही है, समझे? वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। किस बारे में? वो समय आ गया है कि जब उसकी दुल्हन उठा ली गई है। क्या वो समय आ गया है कि वो समय और ना होगा? स्वर्गदूत एक पांव पृथ्वी पर रखने के लिए तैयार है और दूसरा पांव समुद्र पर। मेघधनुष उसके सिर पर है, पांव के साथ, और कहता है समय समाप्त हो गया। इसे छोड़ उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और शपथ खाई कि समय और ना होगा। जब ये घटित हुआ, कितना कितना सिद्ध है ये कलीसिया के लिए, एक शपथ पत्र। समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है। आप कहते हैं अच्छा वो मार्ग के अंत में आ रहा है और आपको परेशानी है, इससे आप क्या सोचते हैं? जब कुछ महान आत्मिक घटित होता है वो आपको परेशान करता है। ओ प्रभु ओ, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। तब जब मेमने ने पुस्तक ली और पहली मोहर तोड़ी, परमेश्वर अपने अनंत सिंहासन से बोला कहने को कि वो मोहर प्रकट होने के लिए क्या थी। परंतु जब ये यहुन्ना के सामने रखी गई तो ये एक प्रतीक में थी। जब यहुन्ना ने ये देखा ये अब भी एक भेद था। क्यों? ये उस समय भी प्रकट नहीं की गई, ये तब तक प्रकट नहीं की जा सकती थी जो इसने यहाँ कहा अंत के समय में, परंतु ये एक प्रतीक में आती है। जब गर्जन हुई, स्मरण रखें, एक धमाके के शोर में एक गर्जन परमेश्वर की आवाज है, यही जो बाइबल कहती है। देखिए एक धमाका गर्जन का, उन्होंने सोचा ये गर्जन थी परंतु ये परमेश्वर था। वो ये समझ गया क्योंकि ये उस पर प्रकट किया गया था, समझे, ये गर्जन थी। और ध्यान दें, पहली मोहर खुल गई। पहली मोहर जब ये प्रतीक के रूप में खुली, गर्जन हुई। अब इस विषय में क्या है जब ये वास्तविक रूप में खुली? ओह, जैसे ही मेमने ने मोहर खींचकर खोली और इसने क्या प्रकट किया? अपने आप में सब नहीं, ये परमेश्वर के पास है। अगला ये प्रतीक में है, तब ये प्रकट हुई। तीन चीजें, समझे, ये सिंहासन से आ रहा है। पहला, ये देखी सुनी या कुछ नहीं की जा सकती है, ये मोहर बंद है। मेमने के लहू ने दाम चुकाया है, और जब वो बोला तो गर्जन हुई, और जब उसने ये किया एक सफेद घोड़े पर घुड़सवार निकला, और ये अब भी प्रतीक में है। अब ध्यान दें, उसने कहा ये अंत के दिनों में जाना जाएगा, परंतु ये कलीसिया के प्रतीक में आता है। कलीसिया, क्या आप ये समझते हैं? ये कलीसिया के प्रतीक में आगे आता है कि वे जानते हैं कि वहाँ एक मोहर है, परंतु ये अभी क्या है वे नहीं जानते, क्योंकि ये सफेद घोड़े का सवार है। और ये अंत के दिन में प्रकट होने के लिए है। जब ये वास्तविक मोहर तोड़ी गई, किसके लिए तोड़ी गई? मसीह के लिए नहीं, परंतु कलीसिया के लिए। अब ध्यान दें, ओ प्रभु ये मुझे थरथरा देता है। मैं आशा करता हूँ कि कलीसिया इसे सच में समझती है कि मेरा आप लोगों से क्या अर्थ है। मैं आपको दुल्हन कहकर पुकारने जा रहा हूँ, देखिए कि आप इसे समझ लेंगे। गर्जन एक आवाज है। आवाज कहाँ से आई? सिंहासन से, जहाँ मेमना एक बिचवाई करने वाले की तरह से हटा। अब ये वो यहाँ खड़ा है कि अपना स्थान ले और अपने दावे को। परंतु गर्जन सिंहासन के अंदर की ओर से आई, गर्जन हुई, और मेमना वहाँ बाहर खड़ा था। गर्जन जहाँ से मेमना हटा, पिता के सिंहासन को छोड़ा कि जाकर अपना सिंहासन ले। महिमा हो। अब मित्रों, अब इसमें ना चूकें। एक मसीह के समान हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई कि वो मसीह को उठाएगा ताकि उसके सिंहासन पर बिठाए और उसे एक अनंत राज्य इस पृथ्वी पर दे। उसने किया। और यीशु ने कहा वो जो मसीह विरोधी पर जय पाए और संसार की सारी चीजों पर, वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। समझे? ओ वो किसी दिन पिता के सिंहासन से उठता है और जाकर अपने सिंहासन को लेता है। अब वो अपने लोगों को बुलाने के लिए आता है, वो उनका दावा कैसे करने जा रहा है? छुटकारे की पुस्तक पहले ही हाथ में है, महिमा हो। ओ मेरा भजन गाने को मन कर रहा है। जल्द ही मेमना अपनी दुल्हन को सदा के लिए अपने साथ लिए लेगा। स्वर्ग की सारी सेना जमा होगी इसे देखने को। ओ ये एक शानदार दृश्य होगा, सारे संत बेदाग सफेद और यीशु के साथ अनंत उत्सव में। ओ प्रभु, स्वर्गीय स्थानों में बैठने के विषय में बातें करते हैं, ये क्या होगा यदि हम यहाँ पृथ्वी पर बैठे हुए इसी प्रकार अनुभव करें, इसके पहले कि उठा लिए जाना हो इस स्थिति में जिसमें हम अब हैं, और हम आनंदित हो सकते हैं और दीवारों के साथ लगे खड़े होते हैं और वर्षा में खड़े होते हैं, बस ये सुनने के लिए कि क्या होगा जब हम उसे वहाँ बैठे देखेंगे। ओह प्रभु, ओह ये महिमामय समय होगा। पिता का सिंहासन छोड़कर सामने आया कि उसका पुत्र होने, वो दाऊद का पुत्र है, यही जो इसराइल ने सोचा कि वो तब करेगा। सरफुनी स्त्री को याद रखें, कहा तू दाऊद का पुत्र। अंधे बर्तुलमई को याद रखें, तू दाऊद की संतान। और यीशु को मालूम था कि योजना क्या थी, जबकि वे नहीं जानते थे। उन्होंने उसे बाध्य करने का यत्न किया कि वो सिंहासन ले, और यहाँ तक कि पिलातुस ने उससे पूछा, परंतु उसने कहा यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे लोग लड़ाई करते, मेरा राज्य ऊपर का है। परंतु उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे ये स्वर्ग में होती है, आमीन। ओ ये चीज कितनी महिमामय है। अपना सिंहासन लेने के लिए पिता का सिंहासन छोड़ा, अब वो अपने बिचवाई के कार्य से बाहर आ गया कि अपने सिंहासन का दावा करे। अपने छुड़ाए हुए लोग इसे करने के लिए वो सिंहासन से आया। तब ये सिंह के समान जानदार यूहन्ना को कहा गया, आ और देख। ध्यान दें, क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? उन सात मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। आप जानते हैं प्राणी क्या है, हम उन्हें ले चुके, एक सिंह के समान, एक बैल के समान और एक मनुष्य के समान और एक उकाब के समान। अब पहले प्राणी ने कहा, ध्यान दें, हर बार एक अलग प्राणी, जब तक वे चार घुड़सवार निकले, वहाँ चार प्राणी हैं और वहाँ चार घुड़सवार हैं। ध्यान दें, उनमें से प्रत्येक प्राणी घोषणा करता है, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। हम इसे फिर से लेने जा रहे हैं और प्रमाणित करेंगे कौन सा मती, मरकुस, कौन सा मरकुस, मरकुस कौन सा वाला यूहन्ना। प्रत्येक जैसे कि वे गए, उनमें से एक प्राणी ने कहा, आ देख। उसने गर्जन का शोर सुना और उनमें से एक प्राणी ने कहा, अब आ देख। अब दूसरे शब्दों में यहाँ मेमना खड़ा है और यूहन्ना वहाँ खड़ा हुआ घटित होते देख रहा है। मेमना सिंहासन से आता है जैसे कि वो घात किया गया था, उसके सारे लहू में है, केवल वही मिला जो योग्य था। और जब वो वहाँ पहुँचा और पुस्तक को लिया, वो हर चीज चिल्लाने लगी और चीखने और चलता रहा। आप देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि छुटकारे का भुगतान हो गया था, अब वो अपने का दावा करने आ गया, इसलिए वो पुस्तक को लेता है और यूहन्ना के सामने खड़ा होता है। वो इसे पीछे की ओर खींचता है और मोहर को तोड़ता है, मोहर को नीचे की ओर खींचता है, और जब वो मोहर को नीचे खींचता है तो उस स्थान में गर्जन होती है, और जब गर्जन गर्जी तो कोई संदेह नहीं, यूहन्ना हवा में उछल गया जब गर्जन की गर्जना हुई। और तब चारों प्राणियों में से एक ने कहा, अब आ देख, ये क्या है, यहाँ इसके नीचे क्या प्रकट हुआ। ओह प्रभु, यूहन्ना जो तूने देखा उसे लिख ले। इसलिए यूहन्ना देखने के लिए जाता है कि ये क्या था। यूहन्ना देखने के लिए जाता है कि गर्जन ने क्या कहा, ये तब कि इस प्राणी ने यूहन्ना को बताया, आ देख कि पहली मोहर के नीचे कौन सा भेद है। गर्जन रचयिता की आवाज ने बोला, अब उसे जानना चाहिए कि वो क्या है। देखा, ओह प्रभु, परंतु अब सोचिए, उसने ये लिखा, परंतु जब उसने वो दूसरे सात गर्जन लिखने आरंभ किए, उसने कहा इसे मत लिख, उसे हर चीज जो उसने देखी लिखने का अधिकार दिया गया था। परंतु जब ये सात गर्जने प्रकाशित वाक्य 10 में बोली, उसने कहा इन्हें बिल्कुल मत लिख। ये भेद हैं, हमें अब भी नहीं मालूम कि ये क्या है, परंतु मेरे दृष्टिकोण में वे बाद में प्रकट होंगी। जब ये होता है तो ये उठा लिए जाने के अनुग्रह के लिए विश्वास देगा उस कलीसिया के लिए कि चली जाए। समझे, हम हर चीज से होकर निकल रहे हैं जो हम जानते हैं, उन सारी व्यवस्थाओं में से हमने हर चीज पर ध्यान किया, हमने परमेश्वर के भेदों को देखा, हमने दुल्हन के महान एकत्र होने के प्रकटीकरण को देख लिया इन अंत के दिनों में, परंतु अब भी उसमें कुछ है जिस पर हम अपने से प्रकाश नहीं डाल सकते, इसमें कुछ और है। परंतु मैं कल्पना करता हूँ जब ये भेद सामने आने लगते हैं, परमेश्वर ने कहा अब इसे रोक ले, एक मिनट रुको, मैं इसे उस दिन में प्रकट करूंगा, इसे बिल्कुल भी मत लिख यूहन्ना, क्योंकि इस पर लड़खड़ा जाएंगे, बस इसे जाने दे, देखिए, परंतु मैं इसे उस दिन में प्रकट करूंगा जब इसे करने की आवश्यकता होगी। वे बिना किसी बात के लिए कभी नहीं बोले, स्याही की छोटी बूंद को याद रखें, हर चीज का उद्देश्य है, हर चीज का कारण है, परंतु ध्यान दें, रचयिता बोला और उसने ये आवाज सुनी और वो देखने को गया। परंतु अब मेमना यूहन्ना को दिखा रहा है कलीसियाई वचन के प्रतीक में, जैसे कलीसिया को जानना है क्या लिखना है, उसने बस उसे दिखा दिया, कहा अब इसे न बता कि ये क्या है, यूहन्ना नीचे जाकर मत कहे कि अब ये जो है वो क्या है, इस सातवीं मोहर के नीचे जाकर मत बता, क्योंकि यदि मैं यूहन्ना को ये बताता हूँ तो उन सारे बीते युगों की योजना टूट जाएगी। ये एक भेद है, समझे, वो बस चाहता है उसका आगमन, उसने कहा अब और कोई ये जानने नहीं जा रहा है कि मैं कब आ रहा हूँ, समझे, बस यही है, ये मेरा काम नहीं है कि जानूं कि कब, मैं बस तैयार रहूंगा, आप देखिए। इसलिए जब उसने कहा अब यूहन्ना आगे बढ़ा, उसने सोचा अब मैं ये देखने जा रहा हूँ। अब उसने क्या किया जब यूहन्ना आगे बढ़ा, वो अब उसे अब क्या करना है, अब इसे कलीसिया काल के लिए लिखना है, उसे यही करना चाहिए कि कलीसिया कालों को लिखे, सात सुनहरे चिरागदानों में जो तू देखता है वो लिख, आरंभ में इस कलीसिया को लिख और उन्हें बता, ठीक है। और गर्जन हुई, यूहन्ना को मालूम था कि ये परमेश्वर की आवाज है, और तब सिंह समान प्राणी ने कहा आ देख ये क्या था। और जब यूहन्ना आगे बढ़ा अपनी कलम के साथ कि लिखे कि वो जो भी देखने जा रहा है, अब उसने कभी नहीं देखा कि ये सही में क्या था, वो इसे कभी नहीं समझा, परंतु जो उसने देखा, जो परमेश्वर कलीसिया के लिए एक समय के लिए भेज रहा था, अब उसे मिला, वो करेगा, वो सदा करता है, वो इसे स्पष्ट करता है जब इसे स्पष्ट करने का समय आता है, परंतु उसने इसे तब स्पष्ट नहीं किया था, क्या, क्योंकि वो इसे अंत के काल तक छिपा के रखना चाहता था, और अंत के दूत के संदेश देने के दिनों में वो सारे भेदों को समेट लेगा, समझे, इसे स्पष्ट नहीं किया, परंतु जो यूहन्ना ने देखा, उसने बस देखा एक सफेद घोड़ा बाहर गया उसके सवार के साथ, इसलिए उसने जो लिखा, देखिए, जब उसने किया यही जो उसने कहा आ देख, इसलिए यूहन्ना देखने को गया जो वो देख सका कि कलीसिया को लिखे, और जब वो किया उसने देखा एक सफेद घोड़ा, और वो जो उस पर बैठा था उसके पास एक कमान थी, और वो जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और जय प्राप्त करे, और उसे एक मुकुट दिया गया था। और जब यूहन्ना ने बस यही देखा, इसलिए उसने लिखा, वो सारा का सारा लिखा। अब देखिए, ये प्रतीक में है इस प्रकार से कि कलीसिया ने ये प्राप्त किया, परंतु प्रतिज्ञा के साथ और अंतिम दिन में वो इसे प्रकट करेगा, दिखा कि ये क्या है, परमेश्वर इसे समझने में हमारी सहायता करे। कलीसियाई काल, परंतु ये तब तक पूरी रीति से नहीं जाना गया जब तक सातवां दूत इस अंतिम कलीसिया, ध्यान दें, वो आरंभ करता है सातवीं कलीसिया काल का ये दूत, यदि आप इस पर ध्यान देते हैं, वो कोई नामधारी आरंभ नहीं करता है जैसे उन बाकियों ने किया, स्मरण रखें, यदि वो आरंभ नहीं करता, नहीं, यदि आप ढूंढेंगे तो वो इसके विरोध में है। क्या एलिया इसके विरोध में था? निश्चय ही वो था। क्या यूहन्ना इसके विरोध में था एलिया के आत्मा के साथ? एलिया पर किस प्रकार का आत्मा था वो उसके विषय में कोई भी अधिक नहीं जानता, वो बस एक मनुष्य था, परंतु वो एक भविष्यद्वक्ता था, उससे घृणा की गई, ओ प्रभु। और किस समय वो उठा? ठीक इसराइल की लोकप्रियता के समय में, जब वे सारे संसारिक हो गए थे, और इसने वहाँ उसे लिया, और वो एक स्त्री से घृणा करने वाला था, ओ जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही वो था, और उसने बीहड़ को पसंद किया, ये उसका स्वभाव था। तब उन लोगों को मालूम होना चाहिए था कि वो व्यक्ति उसी आत्मा के साथ कब बाहर निकल कर आता है, ये यूहन्ना है। लोकप्रिय लोग जैसे वेशभूषा नहीं, जैसे कि मैंने बीती रात्रि में कहा, वे बालकों को चूमते और विवाह और गाड़ते और आदि आदि, परंतु ये मनुष्य जंगल से निकल कर आया। वो क्या था? उसने जंगल से प्रेम किया। दूसरी चीज उसने की, उसने नामधारी से घृणा की। उसने कहा, अब तुम ये ना कहो कि हम इससे उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। वो समझौता करने वाला नहीं था। वे नहीं सके। कहा, क्या तुम हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे? यहूना को नहीं। नहीं श्रीमान। उसने और भी क्या किया? एलिया के समान जिसने इजाबेल से कहा, उसने हेरोदियास से कहा, सीधा हेरोदेस के सामने गया और कहा, उसे रखना ये व्यवस्था के विरुद्ध है। उसने उसका सिर कटवा दिया इस बात के लिए, समझे? उसने एलिशा को पकड़ने का यत्न किया। वही आत्मा जो इजाबेल में थी, इस स्त्री में थी, और वही चीज आज इजाबेल की कलिसिया में है। वही चीज, अब इस पर ध्यान दें। हम ये क्या ही महान शिक्षा पाते हैं। और अब ऐसा लगता है कि ये लोग जान गए। यहूना ने उन लोगों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और वहाँ खड़ा है। लगता है वे समझ गए होंगे कि ये एलिशा का आत्मा है। उन्हें ये समझ जाना चाहिए, यही वो जो था। अब और हम पाते हैं कि कलीसियाई कालों में होते हुए हैं, वचनानुसार जिसकी हमसे प्रतिज्ञा की गई है, उस आत्मा की वापसी अंत के समय से जरा सा पहले, ये सत्य है। और अब ध्यान दें, आप इसके स्वभाव पर ध्यान दें। वो दूसरा कलीसिया युग आरंभ नहीं करेगा जैसे लूथर और वेस्ली और उन सब बाकी लोगों ने किया। वो कोई दूसरी कलीसिया आरंभ नहीं करेगा, क्योंकि अब आरंभ करने के लिए और कोई कलीसिया युग नहीं है, समझे? और कोई नहीं है, इसलिए उसे इसके विरोध में होना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा बिल्कुल वैसी ही होगी जो पहले हुए थे, वही आत्मा। और जैसा कि मैंने बीती रात्रि कहा कि परमेश्वर को अच्छा लगा कि इसे तीन अलग अलग समयों में इसे प्रयोग करे, कि उसका अंक तीन है, न कि दो। तीन दो बार पहले उपयोग कर चुका, अब वो इसे फिर से उपयोग में लाने जा रहा है। उसने ऐसा कहा है, ये प्रतिज्ञा दी है। अब ध्यान दें, जब उसने किया, वो कोई नामधारी आरंभ करने नहीं जा रहा है, क्योंकि लुदेकिया कलीसिया काल अंतिम काल है, और सातवें दूत का संदेशवाहक, जो कि सातवां संदेशवाहक है सातवीं कलीसियाई काल के लिए, वो व्यक्ति है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करने जा रहा है ये सारी भेद भरी बातें। ये होने जा रहा है। गत रात्रि कितने यहाँ पर थे? आपके हाथ देखूं, मैं समझता हूँ तब तो मुझे ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं कि ये कहाँ पर है, दसवें अध्याय में, देखिए। ठीक है, ठीक है। सुधारक गिरी हुई कलीसियाई युग को सुधारने आए, उन पिछले वालों को, और फिर उन सुधारकों के आने के बाद, और कलीसियाई युग को जहाँ वे थे और संसार में चले गए थे, तब उन्होंने नया कलीसिया युग आरंभ किया। उन्होंने सदा यही किया, सदा। अब हम इससे होकर निकले, समझे? दूसरे शब्दों में, यहाँ एक कैथोलिक कलीसिया युग था, रोमन कैथोलिक कलीसिया। इसके साथ लूथर आया, एक सुधारक। वो एक सुधारक कहलाया, और वो क्या करता है? वो ललकारना शुरू करता है, और जब वो करता है, वो कलीसिया का विरोध करता है। और पहली बात आप जानते हैं वो क्या करता है, वो उसी चीज को बनाता है जिसे निकालने के लिए वो बाहर आया, दूसरी कलीसिया से। तब उनके पास दूसरा कलीसियाई काल हुआ। तब पहली बात आप जानते हैं यहाँ आती है, कलीसिया युग इतनी गड़बड़ी है। जॉन वेस्ली आता है, दूसरा सुधारक। देखिए, दूसरा कलीसिया युग बनता है, समझे मेरा क्या अर्थ है? दूसरा कलीसिया युग बनाया गया, वे सब सुधारक हैं। इस अंतिम संदेश पर ध्यान दें, इस अंतिम कलीसिया युग के ये सुधारक नहीं है, वो एक भविष्यद्वक्ता है। सुधारक नहीं, मुझे दिखाएं कभी भविष्यद्वक्ता ने कलीसिया युग आरंभ किया। वो सुधारक नहीं है, वो एक भविष्यद्वक्ता है। दूसरे सुधारक थे परंतु भविष्यद्वक्ता नहीं। यदि वे होते तो प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है। यही कारण है कि वे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर निरंतर बने रहे, और वे सारी चीजें, क्योंकि वे सुधारक थे न कि भविष्यद्वक्ता। परंतु फिर भी वे परमेश्वर के महान पुरुष थे। जिस दिन वे जिए उस दिन की आवश्यकता को देखा, और परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया, और उन्हें भेजा गया कि उन चीजों के टुकड़े टुकड़े कर दें। परंतु परमेश्वर का पूर्ण वचन उनके पास कभी नहीं आया, क्योंकि वे भविष्यद्वक्ता नहीं थे, वे सुधारक थे। परंतु अंत के दिनों में इसे भविष्यद्वक्ता ही होना है कि परमेश्वर के भेदों को ले इसे वापस लाए, क्योंकि भेद केवल भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किए गए थे, इसलिए इस व्यक्ति को ही आना था। देखा मेरा क्या अर्थ है? अब वो सुधारक नहीं हो सकता, उसे भविष्यद्वक्ता ही होना चाहिए, क्योंकि ये कोई होना चाहिए जो वरदान पाए हुए हो और वहाँ हो जो वचन को पकड़ता है। अब उन सुधारकों को मालूम था कि कुछ गड़बड़ थी। लूथर ये जानता था कि वो रोटी मसीह की देह नहीं थी, और इसलिए उसने प्रचार किया धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और ये उसका संदेश था। और जब जॉन वेस्ली साथ साथ आया, उसने देखा कि वहाँ पवित्रीकरण था, इसलिए उसने पवित्रीकरण प्रचार किया, ये उसका संदेश था। समझे, पेंतिकोस्तल पवित्र आत्मा का संदेश लेकर आए और आदि आदि। परंतु इस युग के अंत के दिनों में संदेश वहाँ कोई सुधार आरंभ नहीं करेगा, परंतु सारे भेदों को लेकर जो उन सुधारकों ने छोड़ दिए थे और उन्हें एकत्र करके उन लोगों के लिए हल कर दिए। मैं इसे फिर से पढ़ दूं, ये सुनने में मुझे अच्छा लगता है, मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्दूत को बादल ओढ़े हुए स्वर से उतरते हुए देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। अब हमने वही चीज देखी जो कि मसीह था, और हम जानते हैं मसीह सदा कलीसिया का संदेश वाहक है। ठीक है, वो आग का खंभा कहलाता है, वाचा का दूत और आदि आदि। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी, और यहाँ पर मोहर तोड़ी गई। अब हम उन्हें तोड़ रहे हैं, परंतु ये चीज खुली है। उसने अपना दाहिना पांव समुन्द्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए, ओ पूरा। जब गर्जन के साथ वो शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, परमेश्वर जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। समझे, जिस स्वर्दूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीविता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को जो कुछ उस पर है, और समुद्र को जो कुछ उसमें है सृजा, उसकी शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। ध्यान दें, अब इसे न भूलें। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, वरन सातवें स्वर्दूत के तुरई फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में ये अंतिम दूत है, पृथ्वी का दूत। ये स्वर्दूत स्वर्ग से नीचे आता है, परंतु वो यहाँ सातवें दूत की आवाज के विषय में बोल रहा है, जो कि एक स्वर्दूत का अर्थ है संदेशवाहक। कोई भी ये जानता है, कलीसिया युग के लिए संदेशवाहक। सातवें दूत के तुरई फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, सात मोहरें, सारे भेद, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, पूरा होगा। समस्त भेद खोल दिया। ये इस दूत की सेवकाई है, समझे, सादगी में लोग इसके ऊपर गिर पड़ते हैं, परंतु फिर भी ये सिद्धता में प्रमाणित होगा, ये बिल्कुल सही जाना जाएगा। समझे, हर कोई जो देखना चाहता है इसे देख सकता है। समझे, ये ठीक बात है। परंतु वे यीशु ने कहा, जैसे कि उसने कहा जब वो आता है, कहा तुम्हारे आंखें हैं और देख नहीं सकते, यशाया ने कहा तुमने किया। समझे, तुम्हारे कान हैं और तुम सुन नहीं सकते। अब इसलिए हम पाते हैं, इसने मुझे डरा दिया। मैंने उस घड़ी की ओर देखा और मैंने सोचा कि ये 10 बजे थे, परंतु ये मैं ये तो 9 भी नहीं अब तक। ठीक है, ओ प्रभु, आइए इसे अब लेते हैं। ध्यान दें, मैं इससे प्रेम करता हूँ। दूसरे सुधारक, परंतु परमेश्वर महान लोग होने के नाते उस दिन की आवश्यकता को देखा और सुधार लेकर आए, परंतु प्रकाशित वाक्य 10 कहा कि उसका संदेश प्रकट होना था, न कि सुधार। भेदों को प्रकट करता है। ये वचन मनुष्य में, इब्रानी 4 ने कहा कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तेज है, हड्डी के आर पार भी छेदता और हृदय के भेदों को प्रकट करता है। समझे, ये पुरुष सुधारक नहीं है, ये प्रकट करने वाला है। किसका? परमेश्वर के भेद, जहां कलीसियाएं बंधी हुई हैं और आदि आदि, उसे परमेश्वर के वचन के साथ आना है और चीजों को प्रकट करना है, क्योंकि उसको बालकों के विश्वास को लौटाना है वापस पूर्वजों पर, मूल बाइबल के विश्वास पर सातवें दूत के द्वारा वापस लाना। अब ओ मुझे ये कितना पसंद है, मोहरों के सारे भेद और सुधारक इसे कभी भी पूरी रीति से नहीं समझे। अब मलाकी चार को देखें, बस एक मिनट भाई, आप इस पर निशान लगा लें, वो एक भविष्यद्वक्ता है और पूर्वजों का मूल विश्वास वापस लाना। अब हम उस व्यक्ति की दृश्य पर प्रकट होने की राह देख रहे हैं। वो इतना नम्र होगा कि 10 लाख के 10 लाख गुना लोग, वहाँ एक छोटा सा झुंड होगा जो ये समझेगा। जब आपको याद है उस दिन यहुन्ना को आकर भविष्यवाणी करनी थी, एक दूत मसीह के आगे आता है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, मलाकी ने उसे देखा। मलाकी का तीसरा अध्याय देखें, एलिया का आगमन है जिसे कि मसीह के आगमन के आगे आगे आना था। आप कहते हैं ओ नहीं नहीं भाई ब्रैनम, ये चौथा अध्याय है, मुझे क्षमा करें, यीशु ने कहा ये तीसरा अध्याय है। अब लें, अब आप संत मत्ती का 11वां अध्याय लें, 6वां पद, वो ये कहेगा 11वां अध्याय मैं विश्वास करता हूँ, ये 6वां पद है, 4वां, 5वां या 6वां यही कहीं। उसने कहा यदि तुम इसे ग्रहण कर सकते हो, जब वो यूहन्ना के विषय में बातें कर रहा है, यही वो है जिसके विषय में बोला गया, मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजूंगा। अब मलाकी 3 पढ़ें, कुछ इसे मलाकी 4 पर लागू करना चाहते हैं। नहीं श्रीमान, ये वो नहीं है, ध्यान दें, मलाकी 4, जैसे वो दूत आगे आगे जाता है, संसार पूरी रीति से जल गया और धर्मी सहस्र शताब्दी में आते हैं उनकी राख पर। इसलिए आप देखिए, यदि आप उसे पीछे रखेंगे तो बाइबल कुछ बताती है जो कि ऐसा नहीं था। हमारे पास 2000 वर्ष थे और संसार अब तक नहीं जला और धर्मी इसमें रह रहे हैं, इसलिए ये भविष्य में ही होना है। ओ प्रभु, यदि आप यहाँ प्रकाशित वाक्य में लेते हैं और देखते हैं कि दूत को इस युग के अंत में क्या करना चाहिए, तब आप देखेंगे कि ये क्या है, उसे एक भविष्यद्वक्ता होना चाहिए, उसे ये छोर समझने हैं जिन्हें वे सुधारक नहीं देख पाए और इसे वहाँ रखा। कैसे मती 28:19 की और प्रेरितों के काम 2:38 से तुलना की जा सकती है बिना परमेश्वर के प्रकाशन के? कैसे ये लोग कह सकते हैं कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए और इस प्रकार की बातें, और बिना परमेश्वर के प्रकाशन के? केवल एक ही मार्ग है जो कभी वे जान सके, जाने कि चाहे ये सही है या गलत है, समझे? परंतु वे धर्म विद्यालयों से होकर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे पास समय है कि इसमें जाएं। मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको सप्ताह भर से अधिक नहीं रोकना चाहता। अब जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है, ये इन मोहरों का खुलना। मेरे पास एक दिन है और उस दिन मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि कर सका। अब मलाकी 4 को देखें, वो एक भविष्यद्वक्ता है और पूर्वजों का मूल विश्वास वापस लाता है। अंत के समय में जब पीड़ा का समय आता है, अब यहाँ एक छोटी चीज है, हम उसे उल्टा करने जा रहे हैं। एक मिनट, वे 3.5 वर्ष कहाँ है, या डेनियल के 70 सप्ताह? डेनियल के 70 सप्ताह का अंतिम आधा जो कि 3.5 वर्ष है। अब हम में से कितनों को याद है उस कलीसियाई कालों से, समझे, वहाँ 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। देखिए ये कितना सिद्ध था, कहा मसीह आएगा और वो काटा जाएगा सप्ताह के बीच में बलिदान के लिए, और बलिदान कर्तव्य रोक दिया जाएगा। तब वहाँ 3.5 वर्ष और बाकी होंगे यहूदी के लिए, मसीह की शिक्षा के लिए। परमेश्वर यहूदियों और अन्य जाति के साथ एक समय में व्यवहार नहीं करता, वो इसराइल के साथ एक राष्ट्र के समान व्यवहार करता है और अन्य जाति के साथ व्यक्तिगत। उसने अन्य जाति को अपनी दुल्हन के लिए कभी नहीं लिया, उसने अन्य जातियों में से लोगों को लिया, समझे। अब वो इसराइल के साथ एक राष्ट्र के समान व्यवहार करता है और अब वो वहाँ बैठी है ठीक इस समय एक राष्ट्र के समान। आज मुझे पॉल का पत्र मिला, पॉल बॉयड का, और वो मुझे बता रहा था, बोला भाई ब्रैनम ये बात कितनी सच है कि इन यहूदियों की अब भी अन्य जाति के लिए अजीब भावना है, कोई मतलब नहीं कि क्या हुआ, निश्चय ही उनकी होगी, उनकी होनी चाहिए। जब मार्टिन लूथर ने घोषणा की सारे यहूदियों को भगा देना चाहिए और उनकी इमारतें जला दी क्योंकि वे मसीह विरोधी थे, समझे, मार्टिन लूथर ने स्वयं ये वक्तव्य लिखित में दिया। अब हिटलर ने वही पूरा किया जो मार्टिन लूथर ने कहा। मार्टिन लूथर ने ये क्यों कहा, क्योंकि वो एक सुधारक था न कि एक भविष्यद्वक्ता। वो परमेश्वर मेरे भविष्यवक्ता ने इसराइल को आशीषित किया। उसने कहा, जो कोई तुझे आशीष दे आशीषित होगा और जो तुझे श्राप दे श्रापित होगा। कैसे एक भविष्यवक्ता खड़ा होकर जो दूसरे भविष्यवक्ता ने कहा उसका इनकार कर सकता है? वो ये नहीं कर सकता। इसे तो सामंजस्य में होना चाहिए। देखा, परंतु यही कारण है कि वे वर्ग, देखिए, जर्मनी को मसीही राष्ट्र होना चाहिए और वे जिस प्रकार उन्होंने इसराइल से व्यवहार किया, उन्होंने अब भी कंधे पर छड़ी रखी हुई है और आप उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। परंतु याद रखें, यहूदी यहाँ बैठे हैं, चिंता ना करें, वो दिन आ रहा है, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं भूल सकता। वे हमारे कारण अंधे किए गए हैं। आप जानते हैं, उसने भविष्यद्वक्ता से कहा, वो भविष्यद्वक्ता चिल्ला उठा, बोला, क्या तू इसराइल को भूल जाएगा? उसने कहा, नापने की छड़ी ले और आकाश कितना ऊंचा है, सागर कितना गहरा है। कहा, मैं इसराइल को कभी नहीं भूल सकता। ये उसके लोग हैं, उसके दास। और अन्य जाति उसकी दुल्हन के लिए थोड़े से लिए गए। ये बिल्कुल ठीक है, यही दुल्हन है। अब यही सिद्ध 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, जैसा कि डैनियल ने कहा कि मसीह आएगा और सप्ताह के बीच में काटा जाएगा, और यीशु ने 3.5 वर्ष भविष्यवाणी की। अब इस 3.5 साल के बीच, डैनियल के इसके बीच में वो काटा गया, परंतु अब अंतिम भाग पीड़ाओं का काल है, जहां अन्य जाति कलीसिया है। ओह, ये तो महान है। अब नहीं, दुल्हन दूल्हे के साथ अंदर जाती है, तब 3 शताब्दी के बाद दुष्टों की राख पर चलती है। मैं आपको यहां कुछ दिखाऊं थोड़ी देर के लिए, हम इसे अपने दिमाग में रख लें। आपको जरा दिखाऊं कि क्या कहा गया, बाइबल क्या कहती है, और हम मना नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन होने के नाते यदि हम करते हैं तो हम नास्तिक हैं। देखिए, हमें इसका विश्वास करना है। आप कहते हैं, मैं ये नहीं समझता, ना ही मैं, परंतु मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो इसे प्रकट करे। देखिए, क्योंकि देखो, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी, जैसे अमेरिकन और आदि आदि, और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, जलने जा रहा है। और इस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो फिर तुम उसमें अनंत नरक कैसे पा सकते हो? देखिए, ये अंतिम दिन है जबकि ये चीज प्रकट की जाने वाली है। बाइबल में कोई जगह नहीं है कि कहे नरक अनंत है। इस प्रकार से अनंत नरक पाने के लिए आपके पास अनंत जीवन होना चाहिए कि उसमें बने रहें। अनंत जीवन का एक ही प्रकार है, और वो ये जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हर चीज जिसका आरंभ है उसका अंत है। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए रचा गया है और खर्च हो जाएगा, इसके साथ समाप्त हो जाएगा, समझे? परंतु जब ये घटित होता है, इसमें जड़ या डाली नहीं बचती। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों की राख को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पीड़ाओं के बाद दुष्ट कहाँ जाने वाले हैं? राख में। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इसराइल के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। आमीन। यहाँ पुराना नियम इस प्रकार बंद होता है और यहाँ नया नियम इसी चीज के साथ बंद होता है। आप इसे कैसे दूर हटा सकते हो? नहीं सकते। देखिए, मैं तुम्हारे पास एलिया को भेजूंगा उस दिन के आने से पहले। वो पूर्वजों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पूर्वजों की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। आप यही हैं। ये प्रभु का वचन है, उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, इसे आना चाहिए। और अब यदि आप ध्यान देंगे, ये कैसे घटित होता है, ये सुंदर है। परमेश्वर ये कैसे करता है? दुल्हन चली जाती है और दूल्हे के संग, और फिर इसके बाद दुष्ट ना बुझने वाली आग से जल जाते हैं, और संसार शुद्धिकरण के बाद अपने आप को उत्पन्न करती है। हर चीज को ये करना है, शुद्धिकरण की अवस्था में से पार होना है। इस अंत के महान समय में ज्वालामुखी फूट पड़ेंगे और संसार फट जाएगा और उगलेगा और बढ़ता है, और ये सारे पाप के गंदे स्थान और ये सब जो पृथ्वी पर है कुछ नहीं में पिघल जाएंगे। ये भयानक ताप से जल जाएगा कि ये इस प्रकार होगा जैसे निरंजक उस रंग को, स्याही के रंग को वापस मूल सृष्टि में भेज देता है। इसी प्रकार परमेश्वर की ओर से आग इतनी गर्म होगी जो कि हर गंदगी को वापस उसकी पुरानी अवस्था में बदल देगा। जब शैतान और सारे पाप जल गए और हर चीज, और फिर ये सुंदर हो जाएगा जैसा ये अदन वाटिका में था। ठीक है, ओ ये महान घड़ी हमारे सामने ही है। पीड़ाओं के समय काल में वहाँ जो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, एक छोटी चीज मैंने यहाँ छोड़ दी। इस पीड़ा के समय में दुल्हन के बुलाए जाने के बाद और कलीसिया पीड़ा के समय काल से निकलते हुए 144,000 प्रकाशित वाक्य 11 के दो गवाहों के द्वारा बुलाए गए। अब देखिए, वे 1260 दिनों तक टाट ओढ़े हुए भविष्यवाणी करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये रोमन कैलेंडर, इसमें 28 दिन और कभी 30, 31 होते हैं, परंतु वास्तविक कैलेंडर इसके हर महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, 1260 दिनों को लें और इसे 30 में डाल दें और देखिए आपको क्या मिला। बिल्कुल ठीक 3.5 वर्ष। यही समय है जो ठहराया गया है कि इसराइल को मसीह के संदेश प्रचारने के लिए, जैसा ये पहले था। जब वो वापस आता है और अपने आप को प्रतीक में प्रकट करता है, जब वो आता है, जब यूसुफ को दूसरे देश में ले जाया गया और भाइयों के द्वारा छोड़ दिया गया, क्योंकि वो एक आत्मिक पुरुष था, वो दर्शन देख सकता और सपनों का अर्थ बता सकता था, और जब उसने किया, उसे देश में ले जाया गया और लगभग चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया गया। वो मसीह का ठीक चित्रांकन है, क्योंकि मसीह का आत्मा उसमें था। ध्यान दें, तब क्या हुआ, और ध्यान दें कि जब उसने ये किया, वो जेल में डाल दिया गया और एक मनुष्य बच गया था और दूसरा नष्ट किया गया। बिल्कुल ठीक, यीशु जब वो जेल में था क्रूस पर, एक चोर बच गया था और दूसरा वाला नष्ट हो गया था। बिल्कुल ठीक, कब्र में डाल दिया गया, मरा हुआ मानकर, और उसे उठाया और फिरौन के दाहिने हाथ पर उठाया गया। कोई भी बिना यूसुफ के पहले मिले फिरौन से नहीं मिल सकता था। यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठता है और कोई मनुष्य पिता के पास नहीं आ सकता सिवाय पुत्र के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान दें, हर बार यूसुफ उठता, जब यूसुफ सिंहासन के दाहिने हाथ से उठता, ध्यान दें, महिमा हो, वो यूसुफ फिरौन के दाहिने हाथ पर बैठा है, और जब यूसुफ उठता है कि सिंहासन छोड़े, तुरई बजती, हर कोई अपने घुटने झुकाए, यूसुफ आ रहा है। जब मेमना सिंहासन छोड़ता है वहाँ से, अपने दिनों के बिछवाई के कार्यों से, जब वो वहाँ से सिंहासन छोड़ता और छुटकारे की पुस्तक को लेता है और आगे आता है, हर घुटना झुकेगा, वो वहाँ है। ध्यान दें, जब यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, उसे अन्य जाति की पत्नी मिली, पोतीफर ने दी, या फ्राउन ने उसे अन्य जाति की पत्नी दी, और अन्य जाति बालक उत्पन्न किए, आधे अन्य जाति और यहूदी। उन्होंने एक महान प्रतीक दिया, जब याकूब इन्हें आशीष दे रहा था, एप्रेम एक ओर और मनुष्य दूसरी ओर, उसने अपने हाथ बदल दिए और छोटे बालक को आशीष दी, और दो बालक 12 गोत्र में मिलाए गए उस समय जबकि 10 थे, और उसने स्वयं याकूब में आशीष दी, और यूसुफ उसका भविष्यद्वक्ता था, पुत्र वहाँ खड़ा था, बोला, पिता तूने गलत किया, कहा तूने अपना दाहिना हाथ आशीष का छोटे बालक पर रख दिया, जबकि ये बड़े वाले पर जाना था। और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ क्रॉस हो गए, परंतु इन्हें परमेश्वर ने क्रॉस किया। क्यों? दुल्हन बनने का अधिकार इसराइल का था, अस्वीकार किया और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेच दिया और बड़े बेटे से चला गया इसराइल से, उस नए अन्य जाति को, और आशीषें वहाँ क्रूस पर से अन्य जाति को चली गई। परंतु इसके बाद ध्यान दें, इससे होते हुए जब सब, उसने अपनी दुल्हन ले ली, परंतु जब लड़के अपना भोजन खरीदने आए, ओ ये ऐसा सुंदर चित्र है, मैं मोहर से हट गया, परंतु मुझे ये कहना है, देखिए, क्योंकि आपको अच्छा चित्र मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। अब जब वे भोजन वस्तु खरीदने को आए, आप जानते हैं यूसुफ ने उनको तुरंत पहचान लिया, और यूसुफ संपन्नता का पुत्र था, कोई मतलब नहीं, जहाँ वो गया ये सदा संपन्न हुआ। आप प्रतीक्षा करें जब तक कि वो पृथ्वी पर फिर आए, प्रतीक्षा करें जब तक हमारा यूसुफ आए, समझे? रेगिस्तान गुलाब के समान खिलेगा और धार्मिकता का सूर्य चंगाई के पंखों के साथ उदय होगा। ओ प्रभु, ये सारे नाखनी जो एरिजोना के आसपास हैं, सुंदर वृक्षों में खिल जाएंगे और ये सुंदर होगा। ध्यान दें, यहाँ वो आता है और ये उनके साथ थोड़ी सी चालाकी खेलता है, और वो भेजता है और कहता है, क्या मेरा पिता अब भी जीवित है? समझे, वो जानना चाहता था कि उस लड़के का पिता जीवित था। कहा हाँ, वो जानता था कि वो उसका भाई था। परंतु क्या आपने ध्यान दिया, जब वो अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करने को तैयार हुआ और उसने छोटे बिन्यामीन को पाया जो कि उसके चले जाने के बाद जन्मा था, और ये उन यहूदियों को दर्शाता है, ये 144,000 जो कि वहाँ अब उसके चले जाने के बाद जमा हो रहे हैं। और जब वो लौटा, उसने कहा, उसने बिन्यामीन की ओर देखा, उसका हृदय टूटने को हो गया। और याद रहे वे नहीं जानते थे कि वो इब्रानी बोल सकता था। उसने एक दुभाषिया लिया, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो एक मिस्री है, समझे। और तब जब ये मालूम पड़ा, वो अपने आप को प्रकट करना चाहता था, वो छोटे बिन्यामीन की ओर देखता रहा। और स्मरण रखें, उसने अपनी पत्नी को भेज दिया, वो महल में थी जब उसने अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट किया। और अन्य जाति दुल्हन पत्नी यीशु को अपने लोगों के द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उसने अन्य जाति की दुल्हन ले ली, और वो इसे यहाँ से महल में ले जाएगा उसके अपने पिता के घर महिमा में विवाह के भोज के लिए, और वापस चुपचाप से नीचे आएगा और अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करेगा। 144,000 उस समय वहाँ वो खड़ा है। और स्मरण रखे, प्रतीक को सिद्धता में देखें। और जब वो वापस आता है जहाँ ये था, उसने उन्हें देखा और उसने कहा देखने लगा और वे बातें करने लगे। उन्होंने कहा, अब रूबेन, तुम जानते हो कि हम लोग यहाँ अंदर इसके लिए हैं, देखिए, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने क्या किया है, हमने इस लड़के को इसमें फंसा दिया है। अब हमें अपने भाई को बेचना नहीं चाहिए था। वहाँ वो उनका भाई खड़ा हुआ है, वो सामर्थी राजकुमार, और उन्हें ये नहीं मालूम। यही कारण है कि इसराइल आज उसे नहीं समझ सकता है। अभी वो घड़ी नहीं है कि ये जाने। और तब वो उन्होंने सोचा कि वो इब्रानी नहीं समझ सकता, परंतु वो तो सीधे सीधे सुन रहा था। उन्होंने कहा, अब हम इसके लिए ही अंदर हैं। और यूसुफ जब उसने उनको देखा तो वो और अधिक रुक नहीं सका। अब स्मरण रखें, उसकी पत्नी और बालक उस समय महल में थे, संत चले गए उसकी उपस्थिति से, और उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। और उसने दौड़कर छोटे बिन्यामीन को अपने गले लगा लिया और रोने लगा, समझे, और उसने अपने आप को प्रकट कर दिया। और तब उन्होंने कहा, अब हम जान गए ये हम पर आ रहा है, क्योंकि हमने उसे बेचा था, हम ही थे जिन्होंने उसे बेचा, हम ही थे जिन्होंने उसे मारने का यत्न किया, अब हम जानते हैं कि वो हमें मार डालेगा। उसने कहा, नहीं, अपने आप पर क्रोध ना करो, तुमने ये केवल जीवन को बचाने के लिए किया, इसी कारण परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। और जब उसने अपने आप को प्रकट किया, बाइबल ने कहा, जैसा कि हम इसमें से होते हुए आ रहे हैं, जब वो अपने आप को इन 144,000 पर प्रकट करता है, तो आज का छोटा बिन्यामीन और यहूदियों के जो बचे हुए लोग वहाँ छूट गए, जब वो अपने आप को उन पर प्रकट करता है, तो वे कहेंगे, ये घाव के निशान तुझे कहाँ से लगे, ये तेरे हाथों में क्या कर रहे हैं। वो कहेगा, ओ, ये मुझे मित्रों के घर में लगे, समझे। ओ, तब वे अनुभव करेंगे कि उन्होंने मसीहा को मार डाला। परंतु वो क्या कहेगा, वैसे ही जैसे यूसुफ ने किया, तुमने ये जीवन की सेवा के लिए किया, नहीं, जीवन बचाने को। अपने आप पर क्रोधित मत हो, क्योंकि ये अन्य जाति अंदर नहीं आ पाते यदि यहूदियों ने ये नहीं किया होता। आंखें बंद करने की चाल, इसलिए उसने कलीसिया का जीवन बचा लिया उन बातों के द्वारा जो उन्होंने किया। इस प्रकार आप वही हैं। आज यही कारण है कि वो ये नहीं समझ सकते, ये समय नहीं है, ना ही हम इन बातों को समझ सकते थे जब तक कि ये समझने का समय नहीं आता। ओ प्रभु, प्रकाशित वाक्य के साथ गर्जने, होने पाए वो दुल्हन को दिखा दे कि उस महान रूपांतरण के विश्वास के लिए कैसे तैयार हूँ। अब चलिए जल्दी जल्दी करें, क्योंकि अब हमारे पास 15-20 मिनट भी नहीं है। अब इस सफेद घोड़े का क्या अर्थ है, मैं ये पढ़ूं। मैं बहुत अलग चला गया, विषय से हटने के लिए मुझे क्षमा करें, परंतु मैं पद को फिर से पढ़ूंगा, दो पदों को। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन करता शब्द सुना, आ, देख, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। अब हम दूसरे पद पर जा रहे हैं, एक सफेद घोड़ा, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, ये तब उसके पास नहीं था, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। इसका कुल मिलाकर यही है, यही मोहर है। अब हम प्रतीकों को मालूम करें। हमने पाया कि गर्जन का क्या अर्थ है, ये सटीक, हम ये जानते हैं। देखिए, गर्जन परमेश्वर की आवाज है जब मोहर खुली। अब सफेद घोड़े का अर्थ क्या है, अब यहाँ पर जहाँ प्रकाशन आता है, मैं इस पर ऐसे ही पक्का हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जानते हुए कि ये वचन है। मैंने इस पर हर पुस्तक पढ़ी जो मैं पा सकता था, और साथ ही एक मैं अंतिम बार जब मैं यत्न कर रहा था इसमें होकर जाऊं और सिखाऊं, लगभग 30 वर्षों पहले मैंने पुस्तक ली। किसी ने मुझे बताया था कि एडवेंटिस्ट लोगों को मसीह के दूसरे आगमन पर अधिक प्रकाश है बजाय और लोगों के जो उनको मालूम है। इसलिए मैंने पढ़ने के लिए उनकी कुछ एक पुस्तकें ढूंढी। डैनियल पर मैंने स्मिथ की पुस्तक ली, प्रकाशित वाक्य की, और उसने कहा ये सफेद घोड़ा जो निकल कर गया सफेद था और ये एक जयवंत का प्रतीक है। और इस जय में आप में से बहुत से एडवेंटिस्ट भाई यहाँ पुस्तक को जानते हैं, और आप में से बहुत से दूसरे भी इसके पढ़ने के द्वारा और दूसरे, मैंने दो या तीन पढ़ी मैं याद नहीं कर सकता, और दो पुस्तकें जो मैंने पढ़ी थी, और दोनों व्यक्ति सहमत थे कि ये सही था। वे अच्छे शिक्षक थे, सबसे अच्छे माने जाने वाले, अच्छी रोशनी के साथ। इसलिए मैंने सोचा भाई यदि मैं नहीं जानता हूँ मैं वही कहूँगा जो उन्होंने कहा, उसी प्रकार से सिखाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने इसके बहुत ही अच्छे विस्मक बोधक दिए जो इसका वास्तविक अर्थ है, और उन्होंने कहा अब यहाँ सफेद घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा एक शक्ति है आवेश में लाने वाला, और कहा वो पुरुष जो उस पर बैठा है सफेद घोड़ा था, पवित्र आत्मा था जो आरंभ के काल में निकला और परमेश्वर के राज्य के लिए उस युग को जीत लिया। उसके हाथ में धनुष है जिसका अर्थ जैसे रोम के प्रेम का देवता उसने प्रेम के तीर लोगों के हृदय पर चलाए, परमेश्वर का प्रेम, और उसने जीत लिया। ये सुनने में अच्छा लगता है परंतु ये सत्य नहीं है, नहीं श्रीमान जी हाँ, ये नहीं था। सफेद का अर्थ धार्मिकता, हम ये अनुभव करते हैं सफेद का अर्थ धर्मी शिक्षकों ने ये सिखाया, ये वो पवित्र आत्मा था पहले युग को जीत रहा था, परंतु मेरा प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रकार नहीं है। मेरा प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह और पवित्र आत्मा वही एक व्यक्ति है, केवल एक भिन्न रूप। इसलिए यहाँ मसीह है, वो मेमना, हम जानते हैं वो मेमना था, वो यहाँ खड़ा था अपने हाथ में एक पुस्तक के साथ, और वहाँ सफेद घुड़सवार जाता है। देखिए, इसलिए ये पवित्र आत्मा नहीं था। अब ये अंतिम दिनों के भेद में से एक है, कैसे वो मसीह तीन व्यक्तियों में एक में हो सकता है। ये तीन अलग अलग लोग नहीं हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन परमेश्वरों होने के नाते जैसे कि त्रिएकता वाले हमें बताने का यत्न करते हैं, ये तीन हैं, ये तीन प्रगटीकरण हैं एक ही व्यक्ति के, या आप इसे तीन कार्यस्थल कह सकते हैं। यदि आप सेवकों से बात कर रहे हैं तो आप कार्यस्थल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसे यही सही सोचता हूँ, मैं टेप पर हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। निसंदेह मसीह नहीं कह सकता था मैं अपने कार्यस्थल से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हारे पास दूसरा कार्यस्थान भेजेगा, हम ये जानते हैं, परंतु यदि आप इसे स्पष्ट करना चाहते हैं तो ये तीन गुण एक ही परमेश्वर के हैं, समझे, ये तीन परमेश्वर नहीं, तीन गुण उस एक परमेश्वर के, समझे। और इसलिए मसीह कैसे वहाँ बाहर हो सकता है, सफेद घोड़ा जय प्राप्त कर रहा है और यहाँ पुस्तक अपने हाथ में लिए खड़ा है, यद्यपि ये नहीं है, ये मसीह नहीं है। अब ध्यान दें, पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य में और मसीह, ये पवित्र आत्मा मसीह है दूसरे रूप में, ठीक है। ध्यान दें, ये मेमना है जिसने पुस्तकें खोली, और मेमना मसीह है, और फिर मसीह और नहीं दिखाई दिया उस समय से, परंतु वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिखाई दिया, 19वां अध्याय सफेद घोड़े पर आ रहा है। यदि आप इसे पढ़ना चाहेंगे तो हम प्रकाशित वाक्य 19:11 निकालें और बस इसे जल्दी से पढ़ें, जबकि हमारे पास पर्याप्त समय है, मैं आशा करता हूं, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा बना देगा। 19:11 ग्यारहवें पद से आरंभ करके और नीचे की ओर पढ़ें 16वें पद तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में, जो विश्वासी योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट हैं। मुकुट को देखें, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। मेरी इच्छा है कि मैं इस पर एक मिनट के लिए रुक सकूं। ओ प्रभु, मुझे एक अच्छा विचार मिला है, परंतु संभव हो सकता है यदि आप देखिए, इसे कोई नहीं जानता। क्या कभी आपको मालूम है कि यहोवा का नाम सही नहीं है? कोई जानता है? डॉक्टर वाइल, आप जानते हैं कि ये सत्य है? अनुवादक कभी इसका अनुवाद नहीं कर सके। इसका अक्षर विन्यास JUHV, मेरा मतलब ये यहोवा नहीं है, वे इसे नहीं छू सके, वे नहीं जानते कि ये क्या है। इसे यहोवा कहा, परंतु ये उसका नाम नहीं है। देखिए, हर बार जय हुई या कुछ होता रहा, एक नाम बदला गया। अब्राम के दिनों को देखिए, पहले वो अब्राम था और उस बालक को कभी ना पा सका जब तक कि उसका नाम बदल नहीं गया अब्राहम में, और सारा SARRA कुछ नहीं हो सका परंतु एक मरा हुआ गर्भ, जब तक कि उसका नाम SARAH में नहीं बदल गया। याकूब का अर्थ चालाक धोखेबाज, उसने यही किया। उसने अपने ऊपर भेड़ की खाल लगाई और अपने पिता भविष्यद्वक्ता को धोखा दे दिया कि जन्म अधिकार को ले ले। उसने पानी में पहाड़ी पीपल की छड़ी डाली, उन्हें चित्तीदार किया, पशुओं को जब उनको गर्भ हुआ डरा दिया उससे उनके बच्चों के साथ, ताकि चित्तीदार पशु और भेड़ बनाए। कुछ नहीं, बस एक धोखेबाज। परंतु एक रात्रि उसने कुछ वास्तविक पकड़ लिया और वो जान गया कि ये वास्तविक था, और वो उसके साथ रुका रहा जब तक कि जीत नहीं गया, पकड़े रहा, और उसका नाम बदल गया था और इसराइल कहलाया, जिसका अर्थ एक राजकुमार सामर्थ के साथ परमेश्वर के सामने। क्या ये सही है? हर जीतने वाला। शमाउन मछुआरा था, परंतु जब उसके विश्वास ने पकड़ लिया और जान गया कि वो यीशु था, जब उसने उसे बताया कि वो मसीहा था और उसे बताया कि उसका क्या नाम था और उसके पिता का क्या नाम था, वो जीत गया था और शमाउन से पतरस में बदल दिया। शाउल अच्छा नाम, एक समय शाउल इसराइल में राजा था, परंतु वो एक शाउल प्रेत के लिए सही नहीं बैठा। राजा के लिए सही हो सकता था परंतु प्रेत के लिए नहीं। इसलिए यीशु ने उसका नाम बदल दिया। किससे? शाउल से पौलुस। गर्जन के पुत्रों को देखिए और नीचे जाएं। और यीशु पृथ्वी पर उसका नाम छुड़ाने वाला, यीशु जब वो पृथ्वी पर था वो छुड़ाने वाला था, ये सही है। परंतु जब उसने मृत्यु और नरक पर विजय पा ली और उन पर विजयी रहा और ऊंचे पर चढ़ गया, उसने एक नया नाम पाया। यही कारण है कि आप शोर मचाते हैं जिस प्रकार वे करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता, ये गर्जनों में प्रकट किया जाएगा। ओ समझे, भेदों पर ध्यान दें। वो सवार होकर आ रहा है, कुछ होना है कि इस कलीसिया को बदल दे। आप जानते थे कि कुछ तो होना है, ध्यान दें। कोई मनुष्य नहीं जानता सिवाय उसके। अब ध्यान दें, कोई मनुष्य नहीं जानता सिवाय उसके। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ओ प्रभु, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यहाँ मसीह आता है, वो यहाँ है, न कि वो व्यक्ति जो इस घोड़े की पीठ पर है। भिन्नता पे ध्यान दें। यहाँ ये अपने हाथ में पुस्तक लिए खड़ा है, यहाँ छुड़ाने वाला कार्य। उसने अभी तक अपना स्थान नहीं लिया, इसलिए ये मसीह नहीं था जो आगे बढ़ा। पवित्र आत्मा, उन महान पुरुषों से असहमत नहीं, नहीं श्रीमान, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करना चाहूँगा, परंतु ये वो जो इसके लिए मेरा प्रकाशन है, समझे। यदि आपके पास कुछ अलग है भाई, वो ठीक है, परंतु मेरे साथ ये ठीक नहीं है। आप देखिए, मैं इस प्रकार से विश्वास करता हूँ। देखिए, अब जो आप जानते हैं, समझे। और ध्यान दें, मसीह अब और दिखाई नहीं पड़ता उस समय से, परंतु वो सफेद घोड़े पर है। इसलिए यदि ये व्यक्ति सफेद घोड़े पर चढ़ा हुआ है तो ये केवल मसीह की नकल है, समझे। आप ये समझे, ध्यान दें, सफेद घोड़े के सवार के पास कोई नाम नहीं है। वो दो या तीन उपनामों का प्रयोग कर सकता है, देखिए, परंतु उसके पास कोई नाम नहीं है, परंतु मसीह के पास नाम है। ये क्या है? परमेश्वर का वचन, यही जो ये है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, समझे। घुड़सवार का कोई नाम नहीं है, परंतु मसीह परमेश्वर का वचन कहलाता है, वही जो वो है, वो यही कहलाता है। अब उसके पास एक नाम है जिसे कोई मनुष्य नहीं जानता, परंतु वो परमेश्वर का वचन कहलाता है। ये व्यक्ति कुछ नहीं कहलाता, देखिए, परंतु वो सफेद घोड़े पर है। घुड़सवार के पास उसके धनुष के लिए तीर नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया? उसके पास धनुष है, परंतु तीर के विषय में कुछ नहीं कहा गया। इसलिए ये धोखेबाज होना चाहिए, ठीक है? हो सकता है उसके पास बहुत सारी गर्जन हो और उजियाला ना हो, परंतु आप पाते हैं कि मसीह के पास गर्जन और उजियाला दोनों हैं, क्योंकि उसके मुख से दोधारी तलवार निकलती है और वो जातियों को इससे मार डालता है। ये व्यक्ति नहीं मार सकता, देखिए, परंतु एक ढोंगी का अभिनय कर रहा है। वो एक सफेद घोड़े पर चढ़कर चलता जा रहा है, जय पाने के लिए जा रहा है। मसीह के पास धारदार तलवार है, और ध्यान दें, वो उसके मुंह से निकलती है जीवित वचन, जो कि परमेश्वर का वचन, जो उसके दासों पर प्रकट किया गया, जैसा उसने मूसा से कहा, जाकर वहाँ खड़ा हो और सामने इस लाठी को थामे रह, मक्खियों को बुला, और वहाँ मक्खियाँ थी निश्चय ही। जो कुछ भी उसने कहा उसने वो किया, और ये घटित हुआ। उसका जीवित वचन परमेश्वर और उसका वचन एक ही व्यक्ति है, परमेश्वर वचन है। तो फिर पहली कलीसियाई काल का भेद भरा घुड़सवार कौन है? ये कौन है? आइए इस पर सोचें। ये भेद भरा घुड़सवार कौन है कि पहली कलीसियाई काल में आरंभ हुआ और सीधा निकलता हुआ अनंतता में चला गया, अंत में चला गया? दूसरी मोहर सामने आती है और चलती हुई बाहर अंत में जाती है। तीसरी मोहर आती है और चलती हुई बाहर अंत में चली जाती है। चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, उनमें से प्रत्येक अंत में जाकर सिमट गई। और अंत के समय में ये पुस्तकें जो लिपटी हुई थीं पिछले सारे समय में, उनमें भेदों के साथ ये टूट गईं। तब भेद बाहर आते हैं कि देखे ये क्या है। परंतु वास्तव में ये पहली कलीसिया से आरंभ हुआ, क्योंकि कलीसिया, पहला कलीसियाई काल ने इस प्रकार का संदेश पाया, एक सफेद घुड़सवार निकल गया। समझे, ये कौन है? ये जो जय पाने की सामर्थ्य में शक्तिशाली है, वो अपने जीतने की शक्ति में महान व्यक्ति है। आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं ये कौन है? ये मसीह विरोधी है, वो ठीक यही है। क्योंकि आप देखिए, यदि एक मसीह विरोधी, यीशु ने कहा कि दोनों इतनी समानता में होंगे, यहाँ तक कि चुने हुओं को भी बहका दें, दुल्हन, यदि ये संभव हो, मसीह विरोधी, ये मसीह विरोधी आत्मा है। स्मरण रखें, कलीसियाई युगों में जब हम वहाँ पीछे पहला कलीसियाई काल खोलते हैं, हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा कुछ विशेष बातों के विरोध में था जो उन्होंने उस कलीसियाई युग में आरंभ की, और वो निकोलाइयों के कार्य कहलाए। आपको याद है ये? निको का अर्थ जीतना, लाइटी का अर्थ कलीसिया, लाइटी, निकोलेटियन, कलीसिया को जीतना, पवित्र आत्मा को कलीसिया से बाहर करना और इसे एक पवित्र व्यक्ति को दे देना, और वही सबका मालिक हो। आपने इसे देखा है? देखिए, निकोलेटन, ध्यान दें, निकोलेटन एक कहावत थी एक कलीसिया में। अगली कलीसियाई युग में ये शिक्षा बन गई, और तीसरी कलीसियाई युग में ये बाध्यता बन गई, और उनके पास नीचियन सभा थी, और तब ये कलीसिया में एक शिक्षा बन गई। और पहली बात क्या घटित हुई? इससे एक संस्था। अब क्या ये ठीक बात है? मुझे बताएं, पहली संस्थागत कलीसिया कहाँ से आई? रोमन कैथोलिक कलीसिया। मुझे बताएं, यदि प्रकाशित वाक्य ये नहीं कहता, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17, कि वो एक वेश्या थी और उसकी पुत्रियां वेश्या थीं। ये वही चीज है जो संस्थागत हुई, उसके साथ वेश्या, शिक्षा के लिए घृणित, उनके व्यभिचार की गंदगी को ले रही है, मत के लिए शिक्षा, मनुष्यों की आज्ञाएं। देखिए, वो जीतना आरंभ करता है, ध्यान दें, उसके पास मुकुट नहीं है, वो सफेद घुड़सवार के पास, मैं यहाँ के लिए बोल रहा हूँ, समझे, एक धनुष, एक मुकुट उसे दिया गया था बाद में, समझे, उसके पास आरंभ में मुकुट नहीं था, परंतु एक मुकुट दिया गया था, ध्यान दें, बाद में उसे मुकुट दिया गया, जी हाँ, उनमें से तीन एक पर, ये 300 वर्षों बाद नीसन सभा में हुआ, जब उसने आरंभ किया, एक आत्मा निकोलेटन की लोगों के बीच में एक संस्था बनाए, और फिर ये चलता रहा और कहावत बन गई, और फिर ये शिक्षा हो गई। आपको याद है, मसीह ने कलीसिया से मुड़कर कहा कि तू इन निकोलाइयों के कार्यों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जीतने का यत्न कर रहा है। पवित्र आत्मा को लो, बस एक पवित्र मनुष्य को, वे सारे पापों को क्षमा कर सकता था और सारी चीजें। और हम इसे यहाँ पर पढ़ते हैं, पौलुस ने इस विषय पर कहा है, वो चीज अंत के दिनों में बैठेगी, वो अंत के दिनों तक प्रकट नहीं हो सकेगा। तब वो जो रोकता है परमेश्वर के आत्मा को वहाँ से हटा लेगा और तब वो अपने आप को प्रकट करेगा। आज वो श्वेत घोड़े की आड़ में छिपा हुआ है। ध्यान दें कि वो कैसे सफेद घोड़े से इन कुछ मिनटों में बदलता है। वो केवल सफेद घोड़ा ही नहीं हो जाता, वो बहुत से सिरों और सींगों के साथ पशु हो जाता है। समझे? सफेद घोड़ा अब तक वो एक धोखेबाज है और यही कारण है कि लोग इस सारे समय उसे नहीं जान पाए। उन्होंने ये सोचा, परंतु अब वो यहाँ है, ये वचन के द्वारा प्रकट होने जा रहा है। जब निकोलाई, देखिए, मसीह विरोधी अंततः एक मनुष्य में अवतरित हो जाता है, तब उसने मुकुट धारण किया। जब वो कलीसिया में निकोलाई आत्मा में आरंभ हुआ, वो एक आत्मा है। आप आत्मा को मुकुट नहीं पहना सकते, परंतु 300 वर्षों के बाद वो पोप बन गया और फिर उन्होंने उसे मुकुट पहनाया। उसके पास मुकुट नहीं था आरंभ में, परंतु उसे बाद में मुकुट मिला। देखा, जब वो आत्मा अवतरित हो गई, समझे, वो एक मनुष्य बन गया, निकोलाई शिक्षा मनुष्य बन गई, तब वे उसे मुकुट पहना सके, वे इसे नहीं कर सके क्योंकि वो बस एक शिक्षा थी। महिमा हो, ध्यान दें। और जब वो पवित्र आत्मा हम में अवतरित हुआ, वो जो अब हमारे बीच में अब पवित्र आत्मा के रूप में है, हम में अवतरित है व्यक्ति यीशु मसीह का, हम उसको ताज पहनाएंगे, राजाओं का राजा। ये ठीक बात है, समझे। अब स्मरण रखें उस समय के विषय में जब मसीह सिंहासन पर आता है, मसीह विरोधी सिंहासन पर आता है, यहूदा। उस समय मसीह जब पृथ्वी पर से चला जाता है, यहूदा पृथ्वी से चला जाता है, समय के लगभग जब पवित्र आत्मा वापस आता है, मसीह विरोधी वापस आता है। आप जानते हैं, यूहन्ना ने यहाँ कहा, छोटे बालको मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञान रहो। तुम मसीह विरोधी के विषय में जानते हो, जो कि पहले ही आकर अनाज्ञाकारी बालकों में कार्य कर रहा है। तब मसीह विरोधी वहाँ वो था, निकोलाई आत्मा के रूप में बनने लगा कि एक संस्था को बनाए। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने इन चीजों से घृणा की। समझे, वही आप हैं। ये मैं नहीं था, ये यहाँ कुछ था। वहाँ वो चीज है, वो बाहर आती है, आप इसे देखें। और मैं इसके आसपास में था, मैं इसे अब तक ना देख सका था, और मैं अब इसे जानता हूँ, ये वहाँ है। वो निकोलाई आत्मा परमेश्वर ने घृणा की। अब वो आत्मा अवतरित हो गई और उन्होंने उसे मुकुट पहनाया, और ये ठीक यहाँ पर है जो बाइबल ने कहा वे उसके साथ करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। ओ प्रभु, अवतरित, वो मनुष्य बन गया और फिर उन्होंने उसे मुकुट पहनाया। पढ़ें, ध्यान दें, या पढ़ें, बल्कि कैसे डेनियल कहता है वो कलीसिया का राज्य ले लेगा। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? इसे करने के लिए हमारे पास समय है, क्या हमारे पास नहीं है? ठीक है, सुनिए, आइए वापस डेनियल में चलें एक क्षण के लिए। डेनियल की पुस्तक निकालें और हम एक क्षण के लिए पढ़ेंगे, और हम और 15-20 मिनट या 30 या कुछ ऐसे ही लेंगे। डेनियल का 11वां अध्याय लें और 21वां पद लें। यहाँ डेनियल है। अब डेनियल बोल रहा है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति कब्जा करने जा रहा है। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, रोम की बात, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी। अब ध्यान दें, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। ठीक यही जो इसने किया, यही जो डेनियल ने कहा, ये मसीह विरोधी करेगा। वो लोगों के स्थान में सही बैठेगा। जी हाँ, वो आज के दिन में लोगों के व्यंजन सूची में सही बैठेगा कलीसियाओं के लिए, क्योंकि इस कलीसिया काल में वे वचन नहीं चाहते मसीह, परंतु वे कलीसिया चाहते हैं। पहली चीज, वे आपसे ये नहीं पूछना चाहते कि यदि आप एक मसीही हैं, आप कौन नामधारी कलीसिया से हैं, कौन सी कलीसिया। वे मसीह को नहीं चाहते, वचन को। आप जाकर उन्हें वचन के विषय में बताएं कि कैसे ठीक रहें, वे ये नहीं चाहते। वे कुछ ऐसा चाहते हैं, वे जैसे चाहें जीवन बिताएं और कलीसिया में बने रहें और अपनी गवाही पा लें। समझे, इसलिए वो उनकी व्यंजन सूची में सही बैठता है। बिल्कुल ठीक। और स्मरण रहे, अंत में वो स्त्री वाचक कहलाई बाइबल में, और वो एक वेश्या थी और उसके पास पुत्रियां। बस आज की मांग में सही बैठता है जो लोग चाहते हैं, ये वो है। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है, जब वचन को अस्वीकार किया गया तब वे अपनी इच्छाओं की ओर मुड़ गए। आइए फिर से थिस्सलुनीकियों को पढ़ें। मैं चाहता हूं कि एक मिनट के लिए ध्यान दें। जी हाँ, अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9-11। इसने कहा वे होंगे, अस्वीकार करेंगे सत्य का त्याग, वे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और झूठ की प्रतीति करेंगे और इसके द्वारा दोषी ठहरेंगे। अब यही जो पवित्र आत्मा ने कहा। अब क्या आज कलीसिया की यही इच्छा नहीं है? आप लोगों को बताने का यत्न करते हैं कि उनको ये करना है या वो, और वे आपको तुरंत ये बता देते हैं कि वे मेथोडिस्ट हैं, प्रेस्बिटेरियन हैं, या वे जो भी हैं। वे अपनी नाव में चप्पू नहीं चलाना चाहते, समझे? निश्चय ही वे ये चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा यदि वे ये चाहते हैं तो मैं उन्हें ये लेने दूंगा, और मैं वास्तव में उनसे विश्वास करवा लूंगा कि यही सत्य है, क्योंकि मैं उनको सत्य के प्रति भ्रष्ट बुद्धि दूंगा। अब इधर देखें, बाइबल ये भी कहती है जैसे जैन और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, ऐसे ही ये लोग अंत के दिनों में सत्य के प्रति भ्रष्ट बुद्धि और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को कामुकता में बदल देंगे। प्रभु परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। अब आप देखिए ये कहाँ पर है, केवल कैथोलिक ही नहीं परंतु प्रोटेस्टेंट भी। ये सारी बात है, ये सारा संस्थागत संसार, यही श्वेत घुड़सवार उस धार्मिकता के मार्ग पर, सफेद के नीचे कलीसिया, देखिए, परंतु एक मसीह विरोधी। इसे एक सा ही दिखना है, एक घोड़े पर, या एक की जैसे मसीह घोड़े पर आ रहा है, समझे? ओह, विरोधी इतना मिलता हुआ कि ये चुने हुओं को धोखा दे देगा, और ये यहाँ है, वही मसीह विरोधी। उसने पहली कलीसियाई काल में घुड़सवारी आरंभ की और वो सवारी करता हुआ आगे और आगे हर काल से निकलता है। अब उस पर ध्यान दें। आप कहते हैं पहले पीछे चेलों के समय में वहाँ वो निकोलाई कहलाया, तब वो अगला कलीसियाई युग, तब वो कलीसिया में एक शिक्षा बन गया। पहले वो बस एक कहावत सी थी, तब वो शिक्षा बन गया। फूले हुए, लोकप्रियता प्राप्त लोग, शानदार वेशभूषा, उच्च शिक्षित सभ्य, वे इसे कलीसिया में चलता रहे नहीं चाहते थे। नहीं, वे पवित्र आत्मा से भरा कुछ नहीं चाहते थे। एक कलीसिया होनी चाहिए और हम सब निशियन सभा से होते हुए निकलेंगे और आदि आदि रोम में। जब वे वहाँ आते हैं, उन्होंने कलीसिया को लिया, पागानवाद को लिया, रोमन कैथोलिक या पागानवाद, पागान रोम, और कुछ अंधविश्वास और आश्चर्य को लिया, स्वर्ग की रानी, और उसे माँ मरियम में बदल दिया, मरे लोगों से बिचवाई की और आदि आदि, और वो गोल वाली पापड़ी ली जो कि अब भी गोल है, और उसे मसीह की देह कहते हैं क्योंकि ये स्वर्ग की माता का प्रतिनिधित्व करता है। और कैथोलिक पास से निकलता है और अपने पर क्रूस का चिन्ह बनाता है क्योंकि वहाँ एक ज्योति जल रही है जिसे पवित्र खाने की चीज माना जाता है, जो पादरी की सामर्थ्य परमेश्वर में बदल जाती है, जबकि ये संसार में कुछ नहीं, केवल स्पष्ट पागानवाद है, समझे? ये ठीक बात है। बस मुझे समझ नहीं आता। अच्छा हाँ, मुझे, जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इसे समझता हूँ, निश्चय ही। अब ध्यान दें, ओह प्रभु, वे इसे कैसे कर सकते हैं, समझे? उन्होंने अपनी इच्छाएं दे दी। नहीं, ये सत्य है, आपको ये नहीं करना है। नहीं श्रीमान, यदि आप ये नहीं करना चाहते तो ये करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाता। यदि आप परमेश्वर के मार्ग से होकर मिलान में नहीं जीना चाहते और आराधना, आपको ये नहीं करना है। परमेश्वर ये किसी से नहीं करवाता है। परंतु मैं आपको कुछ बता दूं, यदि आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है संसार की सृष्टि से पहले, तो आप ये करने के लिए आनंदित होंगे। इसे करने के लिए आप एक मिनट भी नहीं रुक सकेंगे। इधर देखिए, आप कहते हैं मैं आपको समझने के लिए दूंगा, मैं भी वैसे ही धार्मिक हूँ। अच्छा, ये सच हो सकता है। देखिए, कौन ये कह सकता था कि वे याजक धर्मी नहीं थे? प्रभु यीशु के दिनों में कौन ये कह सकता था कि इसराइल जंगल में धर्मी नहीं थे? यहाँ तक कि जब वे, भाई परमेश्वर ने मुझे बहुत बार आशीषित किया है, जी हाँ उसने उन्हें भी किया, उनको अपने जीवन को चलाने के लिए काम भी नहीं करना पड़ता था, उसने उन्हें स्वर्ग से खिलाया, और यीशु ने कहा उनमें से हर एक मर गया और नष्ट हो गया। हमारे पूर्वज, उन्होंने कहा 40 वर्षों तक जंगल में मन्ना खाया, यीशु ने कहा, और उनमें से हर एक मर गया, अनंत काल के लिए अलग हो गया, समझे? उसने कहा परंतु जीवन की रोटी मैं हूँ जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतर आया हूँ, एक मनुष्य इस रोटी को खाता है और कभी नहीं मरेगा, समझे? वो जीवन का वृक्ष है। ध्यान दें कि कैसे और कब यीशु आया। वे याजक, वे वहाँ आए बहुत ही धर्मी लड़के, कोई नहीं कह सका कि वे भले मनुष्य नहीं थे, ओ वे उस व्यवस्था की पंक्ति पर चले, हर चीज जो कलीसिया ने कही उन्होंने वो किया, यदि उन्होंने नहीं किया वे पत्थरवा किए गए। और इस प्रकार से वो बाहर गया। आप जानते हैं कि यीशु ने उनको क्या कहा, तुम घास में छिपे सांपों का झुंड ये मत सोचो, क्योंकि तुम उस संस्था से जुड़े हुए हो तो तुम्हारा कुछ भी परमेश्वर से लेना देना है। और यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, कहा हर बार परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता भेजा क्या हुआ, तुमने उसे पत्थरवा करके गाड़ दिया और अब तुम जाकर उनकी कब्रों को चमकाते हो। क्या यही चीज कैथोलिक कलीसिया ने नहीं की? जॉन ऑफ आर्क को देखो और संत पैट्रिक और उन बाकियों को, वे ही हैं जिन्होंने उन्हें गाड़ा और फिर जॉन ऑफ आर्क की देह को खुदवाया और उसे नदी में फेंक दिया सैकड़ों वर्ष बाद और उसे जादू के लिए जलाया। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसके कामों को करते हो, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये सारे संसार में जाएगा, समझे? ठीक है, यही जो यीशु ने कहा। और आप सोचते हैं कि ये ठीक है, ये अच्छा दिखाई पड़ता है वो सफेद घोड़ा, परंतु देखिए आपको क्या मिला, ठीक यही जो सवारी कर रहा है अब। परंतु उसने कहा वे इसे चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें एक जबरदस्त भ्रम में डालेगा। याद रहे प्रकाशित वाक्य 17 की ये वेश्या, वो एक भेद थी, बाबुल का भेद, वेश्याओं की माता, और यूहन्ना ने उसकी प्रशंसा की जैसे कि ये मनुष्य। देखिए प्रतीक्षा करें, हम यहाँ आते हैं और इसे यहाँ इस घोड़े को देखते हुए देखते हैं, समझे? परंतु ध्यान करें, ये था इसका, उसका क्या हुआ, उसने इसकी बहुत ही प्रशंसा के साथ प्रशंसा की, परंतु भेद ये था उसने मसीह के शहीदों का लहू पिया। एक सुंदर कलीसिया वहाँ पर बैठी है, सोने और बैंगनी वस्त्र से सुसज्जित है, और उसके हाथ में व्यभिचार की घृणित वस्तुओं का कटोरा है। व्यभिचार क्या है? अधर्म का जीवन। ये उसकी शिक्षा जो उसने दी परमेश्वर के वचन को लेकर और उसे प्रभाव रहित बनाना, मरियम की जय करने के द्वारा, और ये सब प्रकार की चीजें और उन्हें देना, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। अच्छा आप कहते हैं ये कैथोलिक कलीसिया है, परंतु वो वेश्याओं की माता थी। देखा वो चीज जो वो थी, आप वही हैं। क्या हुआ जब सुधारक मर गए और उसका संदेश मर गया, आपने उससे संस्थागत कर दिया और आवारा लोगों का झुंड उसमें मिला लिए और चीजों को वापस वैसे ही आरंभ कर लिया जिस प्रकार वो चाहते थे। आपने वचन के साथ स्थिर रहना ना चाहा, बजाय इसके कि वचन के साथ चलते वे वहीं टिके रहे। यही है, ओ आप ये ना करें, वो यही है, इसे वहाँ देखें, ध्यान दें। ये एक चीज है जिसे हम बंद करने से पहले एक दो चीजों पर और ध्यान देंगे। ये राजकुमार था जो नष्ट किया गया था, डैनियल के लोग, क्या आप ये विश्वास करते हैं? अब मैं इसे बनाने जा रहा हूँ, यदि आप थोड़ी सी सहायता करेंगे, मेरे साथ नरम रहें कुछ मिनटों के लिए, मैं इसे जल्द बनाऊंगा जितनी जल्दी मैं इसे कर सकता हूँ, परंतु मैं इसे सकारात्मक बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं पवित्र आत्मा मुझे ये देता है, वैसे ही निश्चित रूप से जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, समझे? समझे? अब देखिए, आइए वापस जाकर फिर डैनियल को लेते हैं। एक मिनट, मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ, क्या यदि आप वापस नहीं जाते, ये ठीक है। मैं डैनियल 9 को पढ़ना चाहता हूँ, डैनियल 9 और मैं 26 और 27 पद डैनियल 9 का पढ़ना चाहता हूँ, और ध्यान दें, यदि यही है जो डैनियल के लोगों को नष्ट करता है तो वो ये क्या करने जा रहा है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। देखिए वो 70 सप्ताहों में से 62वें सप्ताह में काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान पुरोहित वादा है कि प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, वो आएगा, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसे होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, और मसीह अपनी पृथ्वी की सेवकाई के 3.5 वर्ष बाद काटा गया था, और मंदिर को क्या नष्ट करता है, किसने इसे नष्ट किया? रोम, निश्चय ही कॉन्स्टेंटाइन, या नहीं मुझे क्षमा करें, टाइटस, रोम का जर्नल, उसने राजकुमार को नष्ट किया। अब ध्यान दें, इस व्यक्ति पर ध्यान दें, सीधा इस दीवार पर आया। जब यीशु जन्मा वो लाल अजगर स्वर्ग में इस स्त्री के पास खड़ा हुआ कि उस बालक को जैसे ही उत्पन्न हो खा जाए, क्या ठीक बात है? ये कौन था जिसने बालक को खाने का यत्न किया कि जब वो जन्मा था? रोम, देखा वो लाल अजगर है, यहाँ आपका राजकुमार, यहाँ आपका पशु, समझे? वे वहाँ सारे के सारे हैं, ठीक वैसे ही देखिए बालक को खा जाए। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग पर उठा लिया और अपने सिंहासन पर बैठा लिया, यही जहाँ मसीह अब है निर्धारित समय तक, समझे? अब ध्यान दे वो क्या करेगा अब, ओ और मैं विश्वास करता हूं कि मैं यहां किसी से बातें कर रहा था, हो सकता है ये आज भाई रॉबर्टसन होंगे या कोई, मैं बातें कर रहा था इस विषय में, यहां इस विषय में नहीं परंतु उसी चीज पर। मैं विश्वास करता हूं अधिक समय नहीं हुआ मैंने इस पर प्रचार किया है कि इस संयुक्त राज्य का इस पैसे वाली स्थिति में क्या होगा। अब हम अपने कर के कर्जों का भुगतान उससे कर रहे हैं जिसका आज से 40 वर्षों बाद भुगतान होगा। इस प्रकार से हम कितने पीछे हैं। क्या आपने कभी केयर पर आए हैं वहाँ या वो जीवन रेखा और इसे सुना था कि वॉशिंगटन से, क्यों हम पूरी रीति से फट चुके हैं। बस यही है मामला। क्या है, सारा सोना रख दिया गया और यहूदियों ने बॉन्ड रखे हुए हैं, ये रोम होने जा रहा है। अब ध्यान दें, हम जानते हैं कि ये बड़े अपार्टमेंट स्टोर, बड़े बाजार किसके हैं, परंतु रोम के पास संसार के धन का सबसे बड़ा भाग है और बाकी यहूदियों के पास। अब इस पर ध्यान दें, अब जरा इस बात को सुने कैसे पवित्र आत्मा इसे मेरे लिए बाहर निकाल कर लाया है। वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अनबलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही उन हुई बातों के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ध्यान दें, ओ वो कितना धूर्त है, वो यहाँ पर है। अब हमें अपना चित्र मिला और जानते हैं कि वो रोम है, हम जानते हैं कि वो श्वेत घुड़सवार है, हम जानते हैं कि वो एक शिक्षा के समान आगे बढ़ा और फिर पागान रोम क्या था, पापर रोम में बदल गया और ताज पहनाया। अब ध्यान दें, अंत के समय में, ना कि आरंभ के दिनों में जब मसीह प्रचार कर रहा था, परंतु अंत के समय में सप्ताह के अंतिम भाग में, जहां हम डेनियल के 70 सप्ताहों को लेते हैं और मसीह ने 3.5 वर्ष तक भविष्यवाणी की और 3.5 वर्ष अभी और ठाने हुए हैं, क्या ये ठीक बात है। और ये प्रधान उस समय में डेनियल के लोगों से वाचा बांधता है जो कि यहूदी हैं। जब ये दुल्हन ले ली जाती है वो इसे नहीं देखेगी। डेनियल के आधे सप्ताह के अंतिम भाग में लोग वाचा बांधते हैं, प्रधान रोम के साथ वाचा बांधता है, उनके साथ वाचा बांधता है, कोई संदेह नहीं धन के लिए, क्योंकि कैथोलिक और यहूदी संसार का धन रखे हुए हैं। मैं वेटिकन में था, मैंने त्रिएक मुकुट देखा है, मेरा साक्षात्कार पोप से होना था, बेरन वॉन बॉमबर्ग ने मेरे लिए तय किया था, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे, और जब वे मुझे राजा के वहाँ ले गए उन्होंने मेरे पैंट के पौचे मुड़वा दिए, ये ठीक है, मुझे बताया जब मैं उसके पास जाता हूँ तो अपनी पीठ उसकी ओर ना घुमाऊं, ये ठीक है, परंतु मैंने कहा मुझे इस व्यक्ति के सामने क्या करना होगा, कहा बस आप अंदर जाएं और अपना एक घुटना नीचे झुकाएं और उसकी उंगली को चूमें। मैंने कहा ये गलत है, नहीं श्रीमान। मैंने कहा मैं किसी व्यक्ति को एक भाई कहूंगा जो भाई बनना चाहता है, मैं उसको आदरणीय पुकारूंगा यदि वो इस उपनाम को चाहता है, परंतु एक व्यक्ति की आराधना, ये तो सब यीशु मसीह का है, समझे, नहीं श्रीमान, किसी भी मनुष्य के हाथ को इस प्रकार नहीं चूमना, नहीं, सही में इसलिए मैंने ये नहीं किया, परंतु मुझे सारे वेटिकन से होकर निकलना था, क्यों, ये आप करोड़ों करोड़ों रुपयों से नहीं खरीद सकते, भाई आप एक होंगे। और जरा सोचिए, संसार का धन, बाइबल ने कहा उसमें पाया जाता है, और जरा सोचें, उस बड़े बड़े महलों को जो करोड़ों गुना, साम्यवाद क्यों यहाँ रूस में उठ खड़ा हुआ, ये बात मुझे परेशान कर देती है कि बहुत से प्रचारकों को साम्यवाद के विषय में शोर करते हुए, और वे ये भी नहीं जानते कि वे किसको ताज पहना रहे हैं। ये ठीक है, साम्यवाद कुछ नहीं है, ये परमेश्वर के हाथों में एक साधन है कि धरती पर संतों के लहू का बदला लाए, ये ठीक बात है, और कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद रोम और यहूदी एक दूसरे के साथ वाचा बांधेंगे, बाइबल ने कहा वे पवित्र लोगों के साथ करेंगे, और अब ध्यान दें, वे इसे बनाएंगे, क्यों ये राष्ट्र बिखरने जा रहा है और बाकी सारा संसार जो सोने के मानक पर है बिखरे हुए हैं, आप ये जानते हैं, यदि हम कर भुगतानों से अलग हटकर जी रहे हैं कर्जों के भुगतान पर अब से 40 वर्षों के लिए, तो हम कहाँ हैं। वहाँ केवल एक ही चीज हो सकती है, ये कि मुद्रा वापस जमा करके बॉन्डों का भुगतान कर दिया जाए, और हम ये कर सकते हैं, वॉल स्ट्रीट इन्हें अपना सकती है, और वॉल स्ट्रीट पर यहूदियों का नियंत्रण है और बाकी बचा हुआ वेटिकन में है, और यहूदियों के पास बाकी वॉल स्ट्रीट में है, उस आर्थिक संसार में। हम उसे नहीं जमा कर सकते, और यदि वे कर सकते थे तो क्या आप सोचते हैं ये विस्की वाले लोग और ये तंबाकू वाले लोग जो कि करोड़ों करोड़ों गुना एक वर्ष में, और उनके इनकम टैक्स को पुरानी गंदी चित्रों और इस प्रकार की चीजों के लिए समाप्त कर दिया, और वहाँ एरिजोना जाते हैं और लाखों एकड़ की भूमि खरीदते या और हजारों और उनके लिए कुएं खोदते हैं $50,000 से, और इसका इनकम टैक्स से भुगतान कर दिया, और यदि आपने भुगतान नहीं किया तो वे आपको जेल में डाल देंगे। परंतु उन्होंने इसे खत्म कर दिया और कुएं खुदवाते और वहाँ बुलडोजरों को भेजते, और वे क्या करते हैं, वे वहाँ रहने वाली परियोजनाएं चलाते हैं उस अगले सत्र में अपने उस पैसे से जो उन्होंने बनाया। उन्हें पैसा लगाना ही है, और वहाँ घरों की परियोजना आरंभ करते हैं और लाखों डॉलरों में बेचते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे लोग समझौता करने वाले हैं कि मुद्रा को बदलें? जैसा कि ये व्यक्ति यहाँ है, उसका क्या नाम है, कास्त्रो ने किया, उसने वो समझदारी का काम जो उसने कभी किया, जब उसने बॉन्डों को नष्ट कर दिया, उनका भुगतान करके उन्हें नष्ट कर दिया। ध्यान दें, परंतु हम ये नहीं कर सकते, ये लोग नहीं करने देंगे। पृथ्वी के धनी व्यापारी ने इसे रोक रखा है, और फिर वहाँ केवल एक ही चीज करने के लिए है, कैथोलिक कलीसिया इसका भुगतान कर सकती है। यही केवल एक ऐसी है जिसके पास पैसा है और वो कर सकती है, और वो इसे करेगी। और ऐसा करने में कि इसे ले, वो यहूदियों से समझौता करेंगे एक वाचा बांधने के लिए, और जब वो यहूदियों के साथ वाचा बांधते हैं, अब स्मरण रखें, मैं इसे पवित्र वचन से ले रहा हूँ, और जब वे इसे करती है और ये वाचा बांधती है, हम डेनियल 8:23-25 में ध्यान देते हैं, उसकी समृद्धि की कारीगरी के कारण होगा, और कारीगरी किस चीज को बनाना, उसके हाथों में, और वो अपनी वाचा यहूदियों के साथ बांधेगी, और इस 3.5 वर्ष के बीच में जब वो अपनी वाचा तोड़ देता है, जैसे ही वो चीजों को समेटता और यहूदियों का पैसा मिला लेता है, और जब ये करता है, ओ प्रभु, ओ वो जब तक कलीसिया काल का अंत नहीं हो जाता, मसीह विरोधी कहलाता है, क्योंकि वो और उसके बालक मसीह और वचन के विरोध में है। ये मनुष्य मसीह विरोधी कहलाया, और ये पैसों पर प्रकट बनाने जा रहा है, और यही जहां मैं सोचता हूँ ये अंदर आएगा। जरा एक मिनट, जब मैं ये कहता हूँ तब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं एक मिनट में वापस जाऊँ। वो मसीह विरोधी कहलाया और मसीह विरोधी कहलाएगा परमेश्वर की दृष्टि में, जब तक अंत समय नहीं आ जाता। अब परंतु तब वो कुछ और कहलाएगा। अब जब वो सारा पैसा अपने नियंत्रण में ले लेता है, तब वो अपनी वाचा को यहूदियों से तोड़ देगा, जैसे कि यहाँ डेनियल ने कहा वो ये करेगा, डेनियल के 70 सप्ताह के अंतिम आधे में। और तब भाई वो क्या करेगा, वो संसार का सारा व्यापार और अर्थव्यवस्था एक समझौता संसार के साथ, क्योंकि वो संसार की सारी संपत्ति पूरी रीति से पकड़े होगा, और उस समय के चलते वे 2 भविष्यद्वक्ता दृश्य में आएंगे और 1,44,000 को बुलाएंगे। तब क्या होगा, तब पशु की छाप प्रकाशित वाक्य 13 की लगाई जाएगी, क्योंकि वो सारी अर्थव्यवस्था व्यापार और इस संसार की हर चीज का अधिकार रखता है। और फिर क्या घटित होगा, वो पशु की छाप अंदर आएगी, कोई भी मनुष्य खरीदना और बेचना नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसके पास पशु की छाप है। परमेश्वर का धन्यवाद, कलीसिया एक महान 3.5 वर्ष महिमा में आनंद करेगी, उसमें होकर नहीं निकलना पड़ेगा। अब ध्यान दें, अंत के समय में कलीसिया युग के अंत में वो कहलाता है, वो और उसके बालक मसीह विरोधी कहलाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो मसीह के विरोध में है वो मसीह विरोधी है, और कोई भी चीज वचन के विरोध में वो मसीह के विरोध में है, क्योंकि मसीह वचन है, अब वो मसीह विरोधी है। तब प्रकाशित वाक्य 12:7-9, जब शैतान निकाला जाता है वो दोष लगाने वाला है। आप ये लिखना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ लें। अब हमारे पास समय नहीं है, ये बंद कर दिया, 10:20 या 15 है, देखिए। परंतु प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में शैतान, वो आत्मा, वो दुष्ट शैतान जो कि इस समय वहाँ है, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, ठीक है, कलीसिया ऊपर उठा ली गई और शैतान बाहर निकाला गया। जब कलीसिया ऊपर जाती है, शैतान नीचे आता है, तब शैतान स्वयं को मसीह विरोधी में अवतरित करता है और पशु कहलाता है। तब प्रकाशित वाक्य 13 वो छाप लगाता है, समझे? जब वो जो रोकता है, केवल अब मसीहत ही इस पृथ्वी पर अपनी शुद्धता में बचती है, क्योंकि वो जो रोकता है, याद रहे, यहाँ पीछे थिस्सलुनीकियों में परमेश्वर के मंदिर पर बैठा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर कहलाता है, पृथ्वी पर पाप क्षमा करता है, और ये चलता रहेगा और दुष्टता भर जाएगी और चलता है, क्योंकि ये अभी तक नहीं जाना गया जब तक कि उसके कहलाने का समय प्रकट नहीं हो गया। और तब कलीसिया उठा ली जाएगी, और जब ये उठा ली जाएगी, तब वो स्वयं को एक मसीह विरोधी से बदलकर, ओ प्रभु, वो कलीसिया, महान कलीसिया, और वो अब वो पशु बन गया। ओ, मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को ये दिखा सकूं। अब स्मरण रखें, मसीह विरोधी और पशु, वो अपने में एक ही आत्मा है, वहाँ त्रितत्व है। जी हाँ श्रीमान, ये उसी शैतानी शक्ति, तीन स्थितियाँ, याद रहे, निकोलाई, देखिए, इसे अवतरित होना ही था, इसके पहले इसे मुकुट पहनाया जा सके, समझे? अब इस पर ध्यान दें, तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था वो मसीह विरोधी कहलाता है, दूसरी अवस्था वो झूठा भविष्यद्वक्ता कहलाया, तीसरी अवस्था वो पशु कहलाया। ध्यान दें, निकोलाई, मसीह विरोधी शिक्षा जो पौलुस के दिनों में शुरू हुई, परमेश्वर के वचन के विरोध में मसीह विरोधी, तब वो फिर से झूठा भविष्यद्वक्ता कहलाया, जो कि जब शिक्षा मनुष्य बन गई, वो पुरोहितवाद की शिक्षा का भविष्यद्वक्ता था, कैथोलिक कलीसिया के पुरोहितवाद का, पोप झूठे वचन का भविष्यद्वक्ता था, और इससे वो झूठा भविष्यद्वक्ता बनता है। और तीसरी स्थिति एक पशु है, एक मनुष्य जिसे अंतिम दिनों में मुकुट पहनाया गया, हर उस सामर्थ्य के साथ जो कभी पागान रोम के पास थी, क्योंकि सात सिरों वाला पशु अजगर स्वर्ग से निकाला गया और आकर झूठे भविष्यद्वक्ता में अवतरित हो गया। वो वहाँ उसके पास सात मुकुट थे, और वो निकाला जाकर और पृथ्वी और समुद्र पर फेंक दिया गया। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, ये सवार कौन है? ये घुड़सवार, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? ये शैतान का श्रेष्ठ मानव सुपरमैन है। उस रात्रि में गया, इस समय वो दो भाई कलीसिया में बैठे हैं, भाई नॉर्मन वहाँ पीछे, और मैं विश्वास करता हूँ भाई फ्रेड। हम वहाँ सुनने को थे जहाँ एक मनुष्य मसीह विरोधी की शिक्षा दे रहा था, एक लोकप्रिय मनुष्य असेंबली ऑफ गॉड का, एक बहुत अच्छा व्यक्ति, और उसका अनुवाद मसीह विरोधी ये था, वे एक प्रकार की विटामिन लेने जा रहे हैं मनुष्य में से, और इस जीवन को मनुष्य में से लेकर उस महान कल्पना जो होने जा रहा है, जो एक बार में एक कदम से शहर का एक खंड पार कर जाएगा। और ये क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक मनुष्य पवित्र आत्मा से भरा हुआ इस प्रकार के भ्रम में या होने का दावा करे? जबकि यहाँ बाइबल कहती है कि कौन मसीह विरोधी है, ये कोई, ये एक मनुष्य है। ध्यान दें, यह घुड़सवार कुछ नहीं सिवाय शैतान का श्रेष्ठ व्यक्ति, अवतरित शैतान, वो एक पढ़ा लिखा योग्य। अब मैं आशा करता हूँ कि आपके कान खुल गए। वे इन बालकों में से एक पर कोशिश कर रहे थे, अधिक समय नहीं हुआ टेलीविजन पर कि देखें, यदि वो अगले व्यक्ति से अधिक चतुर है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, समझे? परंतु जो भी है, उसके पास बहुत बुद्धि थी, ऐसे ही शैतान के पास है। वो इसे बेचने का यत्न करता है, उसने हवा को बेची, उसने हमें बेची, हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे पास है। ठीक है, सारा संसार श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रतीक्षा में है, वे इसे पाने जा रहे हैं, जब तक कलीसिया ऊपर नहीं चली जाती, प्रतीक्षा करें, और शैतान निकाला जाता है, वो अवतरित होगा। ये ठीक बात है, वे किसी को चाहते हैं जो वास्तव में कार्य को करे, वो इसे करेगा। शिक्षित, ये एक शैतान का श्रेष्ठ व्यक्ति है, शिक्षा के साथ, बुद्धि के साथ, कलीसिया के धर्म विज्ञान, अपने ही वचन, अपने ही बनाए हुए के साथ, और वो अपने नामधारी सफेद घोड़े पर सवारी करता है कि लोगों को धोखा दे, और वो संसार के हर धर्म को जीत लेगा, क्योंकि वे सब एक ही संघ में जा रहे हैं, कलीसियाओं के और संसार की कलीसियाओं के संघ में, और उन्होंने पहले ही अपना भवन बना लिया है, और हर चीज पंक्ति में तैयार है। वहाँ कुछ भी नहीं छूटा। हर नामदारी ठीक उसके साथ है, कलीसियाओं के संग में, और जो इसे पका रहा है रोम, और अब पोप चिल्ला रहा है हम सब एक हैं, आओ हम मिल जाएं और मिलकर एक साथ चलें। और ये लोग, यहाँ तक कि फुल गॉस्पल के कुछ लोग इनकार करते हैं, आपकी सुसमाचार सुनने की शिक्षा का इनकार करते हैं कि इस प्रकार का कदम उठाएं। आपने क्या किया है उन नामधारी चीजों के लिए, इतने अंधे कि आपने सत्य का इनकार कर दिया, और सत्य उनके सामने है, और वे इसे छोड़कर चले गए और इसे छोड़ दिया, और अब उन्हें एक जबरदस्त भ्रम दिया गया कि झूठ की प्रतीति करें और इसके दोषी ठहरें। ये ठीक यही बात है, और मसीह विरोधी सब पर नियंत्रण कर लेता है, और बाइबल ने कहा उसने सबको धोखा दिया, AELL, सबको जो पृथ्वी पर हैं, जिनके नाम उस मोहरों के नीचे नहीं लिखे गए संसार के रचने से पहले। अब यदि बाइबल ने कहा, यदि उसने ये किया, उसने ये किया है। वे कहते हैं भाई मेरा संबंध, आप वही हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये वही वैश्या संस्थान, ये वही पद्धति जो आरंभ में शुरू हुई, जो कि मसीह विरोधी है सारे में। मैं इसे सुनूंगा, परंतु ये सत्य है, मेरी आशा है, आमीन। अब ध्यान दें, वो जीत जाएगा और लगभग उसकी पकड़ में है इस समय, जबकि वो अब भी मसीह विरोधी है, इसके पहले कि वो पशु बन जाए। आप क्रूर दंड के विषय में बातें करते हैं, आप जरा प्रतीक्षा करें, ध्यान दें कि यहाँ पृथ्वी पर क्या बचा है, इसमें से होकर निकलना है। ओ, वहाँ पर रोना होगा और शोक और दांतों का पीसना, क्योंकि ड्रैगन रोम ने अपने मुंह से पानी उगला है ताकि स्त्री के वंश के साथ युद्ध करे जो दुल्हन के चुने और ले जाने के बाद पृथ्वी पर रह गए हैं। और अजगर ने बचे हुओं के साथ युद्ध किया, अंदर ना आना चाहा और खदेड़े गए थे, और वास्तविक इसमें से होकर निकलेगी यदि ये संभव हुआ। परंतु आप देखिए, वे लोग इस लहू के नीचे हैं मसीह के अनुग्रह से, और वे पीड़ाओं में से होकर नहीं निकल सकते। उनके लिए कोई पीड़ाओं का काल नहीं है, कलीसिया के लिए अगली चीज उठा लिया जाना है। आमीन और आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। ओ, मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ। मैं आपको बता दूं, हम बता रहे हैं कि वो जीतने वाला है, वो करने जा रहा है, और वो वास्तव में जीतने जा रहा है। वो इससे पहले ही कर चुका है, ये पहले ही इसे सिल चुका, बस सिलने जा रहा है पैसे, गंदे आर्थिक लाभ से। ये सही है, वे परमेश्वर से अधिक पैसे से प्रेम करते हैं। हर चीज जो वे अब सोचते हैं, उनके पास कितना पैसा है, ये क्या है, आप जानते हैं, ये बहुत सी बार कहा गया है, कलीसिया को पैसा दीजिए, वो संसार में क्रांति ला देगी, कलीसिया को पैसा दीजिए, वो समस्त संसार में सुसमाचार सुनाने वाले भेजेंगे, और वो क्या करेगी, वो मसीह के लिए संसार को जीत लेगी। मेरे बेचारे अंधे मित्र, मैं आपको कुछ बता दूं, संसार पैसे से नहीं जीता जाता, परंतु यीशु मसीह के लहू से। परमेश्वर को वो बहादुर मनुष्यों को दें जो वचन पर खड़ा रहेगा, जिए या मरे वो जीतेगा। ओ, वहाँ केवल एक चीज होगी जो जीती जा सकती है, वे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, संसार के रचने से पहले केवल वही इसे सुनेंगे। पैसे से इसका कुछ लेना देना नहीं होगा, वो उनको उनके नामधारी रीति रिवाजों में आगे बढ़ा देगा। आइए देखें, जी हाँ, उन शिक्षित प्रतिभावान, वो होगा, वो तेज होगा, वो, और उनके आसपास उसके बालक तेज तरार होंगे, PhD, LLD, LLD, QSD, ABCD, EF, नीचे Z तक, वे इसे लेंगे कि बुद्धिमान हो जाएं। क्यों? ये शैतान की व्यवस्था अनुसार है, कोई भी चालाक धूर्त बाइबल के विरोध में, वो शैतान का है। ठीक यही जिससे उसने हवा को लिया, हवा ने कहा, ओ ये लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है ये ना करें, उसने कहा परंतु प्रतीक्षा करें, नीचे ही परमेश्वर ये नहीं करेगा, परंतु मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा और तुम्हें कुछ बुद्धि दूंगा, उसे ये मिला, हम उसे चाहते हैं, हमारे पास भी है। ये राष्ट्र, ध्यान दें, वो सारे धार्मिक संसार को जीत लेगा, वो जीत लेगा, डेनियल के लोगों के साथ वाचा बांधेगा। यहाँ ये दोनों हैं, अन्य जाति और डेनियल के लोग, यहूदी, अंतिम सप्ताह के लिए, और यहाँ हम हैं, यहाँ तक कि श्यामपट पर चित्रित किया, और आप इसे सिद्धता में देखते हैं, जहाँ ये है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वहाँ है, वो संस्थागत व्यवस्था शैतान की है, और न ही इस पर कोई कोचा कांची नहीं है, समझे, बिल्कुल ठीक, ये शैतान की जड़ है ये, अब ना कि लोग न वहाँ के लोग, उनमें बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं। परंतु आप जानते हैं क्या, जब हम यहाँ पहुँचते हैं, जब तक हम इन तुरइयों का फूंकना ना लें, और अगली बार मैं आता हूँ, ये तुरइयों की आवाज याद रखें, जब वे अंतिम स्वर्गदूतों का तीसरा स्वर्गदूत आता है, मेरे लोगों तुम बाहर आ जाओ, जब वो स्वर्गदूत उड़ता है उसी समय वो संदेश यहाँ तो अंतिम तुरई के लिए उतरता है। अंतिम स्वर्गदूत का संदेश, अंतिम मोहर खुली, ये सब एक ही समय में घटित होगा। जी हाँ श्रीमान, सब कुछ उलट जाता है और अनंतता में चला जाता है। अब क्या, और इसी समय में ये व्यक्ति जीत रहा है, फिर मैं बंद कर दूंगा और तब परमेश्वर भी कुछ करने जा रहा है। यहाँ हम शैतान को सारा श्रेय ना दें, कुल मिलाकर हम उसके विषय में बातें ना करें, समझे। जब ये महान चीज वहाँ हो रही है, ये महान व्यवस्था संस्थाओं में बदल रही है, उस संगठन में, ताकि वे अपने आप को उसमें एकत्र कर सकें और साम्यवाद के विरोध में खड़े हों, और ये ना जानते हुए कि परमेश्वर ने साम्यवाद को उन्हीं को जीतने के लिए खड़ा किया है। निश्चय ही वो क्या 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 था, उसने रूस में साम्यवाद को खड़ा किया, रोमन कलीसिया की गंदगी के कारण, और बाकी के जिन्होंने जितना पैसा रूस में था सारा ले लिया, और लोगों को भूखों मरने दिया, और उन्हें बदले में कुछ नहीं दिया, और बाकी संसार के समान जीवन बिताते रहे। अधिक समय नहीं हुआ मैं वहाँ मेक्सिको में था, और मैंने उन निर्धन बालकों को देखा। कोई भी कैथोलिक देश आत्मनिर्भर तक नहीं है, उनमें से एक भी नहीं। मुझसे पूछे, कहाँ मुझे दिखाएं वे कहाँ हैं? कोई भी कैथोलिक नियंत्रित देश अपने आप में आत्मनिर्भर भी नहीं। फ्रांस, इटली और वे सारे, मेक्सिको, आप जहाँ भी जाएं, वे लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं। क्यों? कलीसिया ने जो भी उनके पास था ले लिया, इसी कारण से रूस ने इन्हें निकाल दिया। ध्यान दें क्या घटित हुआ, मैं इसे स्वयं से जानता हूँ। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, आप सोचेंगे कि वहाँ स्वर्ण जयंती थी, आप घंटियों को बजते हुए सुनते हैं, और यहाँ बेचारी निर्धन स्त्री सड़क पर आ रही है अपने पाँव को खचेड़ते हुए, और पिता ने एक बालक गोद में ले रखा है, उनमें से दो या तीन रो रहे हैं, वो किसी मरी हुई स्त्री के लिए प्रायश्चित कर रही है जो थी, ये सोचते हुए कि इसके द्वारा वो स्वर्ग में चली जाएगी। ओ क्या ही दुखद बात है। तब मैंने वहाँ खड़े हुए देखा, यहाँ उनकी अर्थव्यवस्था आती है, इतनी खराब है स्थिति, जो कुछ भी उनके पास है कलीसिया ले लेती है, यहाँ थोड़ा सा पंचो है, हो सकता है पंचो का अर्थ फ्रैंक है, वो आता है, वो राजमिस्त्री है, वो एक सप्ताह में 20 पैसे कमाता है, एक जोड़ा जूता खरीदने में उसके सारे 20 पैसे चले जाते हैं कि जूते का एक जोड़ा खरीदे, ये उनकी अर्थव्यवस्था है। परंतु अब यहाँ, तब उस विषय में क्या है, यदि वो राजमिस्त्री होने के नाते ईंटों की चिनाई और सप्ताह में 20 पैसे कमाता है, कह रहा हूँ मैं नहीं जानता वो कितने कमाता है, परंतु कहता हूँ इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, जिस प्रकार ये संभली है। अब ध्यान दें, यदि वो सप्ताह में 20 पैसे कमाता है, अब चीको आता है जिसका अर्थ छोटा वाला, और वो 5 पैसे में सप्ताह का काम चलाता है, और खिलाने पिलाने के लिए उसके पास 10 बालक है, परंतु वहाँ उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है कि उन लगभग 5 पैसों को ले जाए, या उनमें से 4 जो भी है, कुछ ग्रीस की मोमबत्ती जलाने के लिए भुगतान, जो लाखों डॉलर में सोने की वेदी पर जलती है उसके पापों के लिए। आप यहाँ हैं, यह उनके अर्थव्यवस्था की स्थिति है, इस प्रकार के देश हैं, वो चीज सब कुछ ले लेती है, कलीसिया सब कुछ ले लेती है, ये सब उसके हाथों में है, बस यही है। और वो यहूदियों के पैसों के साथ उस वाचा में, जैसा कि बाइबल ने कहा, वे सारी चीजें ले लेते हैं, और फिर वो पशु बन जाता है, वो अपनी वाचा तोड़ देता है, और वो सब हर ले जाता है, वो स्त्री के बचे हुए वंश को नाश करता है इस प्रकार से, और अपने मुंह से पानी बहाता है कि युद्ध करे, और वहाँ पर रोना और शोक और दांतों का पीसना, और महिमा में दुल्हन का विवाह हो रहा है। देखिए उसी समय में, मित्र इसमें ना चूके, परमेश्वर मेरी सहायता करे, मैं वहाँ होना चाहता हूँ, मैं चिंता नहीं करता कितना दाम है, मैं वहाँ होना चाहता हूँ। अब ध्यान दें, उसी समय ये चल रहा है, इसके जरा सा पहले ये घटित होता है, बल्कि पृथ्वी पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, जबकि वे सारे नामधारी की झिझक में अपने मतसार के मतभेदों पर विवाद कर रहे हैं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह सच्चे वचन का सच्चा भविष्यद्वक्ता भेजेगा, संदेश के साथ कि परमेश्वर के मूल वचन की ओर फेर दे, और पूर्वजों का विश्वास कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को लोगों के मध्य में सामर्थ के साथ नीचे ले आए, जो उसे इन चीजों के ऊपर उठा देगा और उसी समय से उसे अंदर ले लेगा। जी हाँ, वही वचन प्रमाणित हो रहा है, यीशु मसीह का ये कि वो आज कल और सर्वदा एक सा है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ तक कि अंत तक। वे कार्य जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, मैं ठीक तुम्हारे साथ होऊंगा थोड़ी देर में, और वे मुझे और नहीं देखेंगे क्योंकि वे अपने आप को संगठित कर लेंगे और बिखर जाएंगे, परंतु तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा अंत तक। जब तक कि उसने कहा अंत के बाद उसका क्रोध उंडेला जाएगा, आप वहीं पर हैं। ओ परमेश्वर, ये सफेद घुड़सवार कौन है? आप अंधे नहीं हैं, आप देखिए ये कौन है। ये मसीह विरोधी है और ये धोखा देने वाली आत्मा जो निकली हुई और रेंग कर अंदर आती है बनाया। और फिर देखिए परमेश्वर इसे दौड़ा रहा है, वो दर्शा रहा है कि एक मनुष्य के समान सफेद घोड़े पर जा रहा है और अपने धनुष के साथ और तीर नहीं है। वो धोखेबाज है, उसमें कोई सामर्थ नहीं है। कहे कलीसिया की सामर्थ ये कहाँ पर है? वे क्या करते हैं? वे कहते हैं हम ही मूल कलीसिया हैं। वास्तविक कलीसिया प्रेतों को निकालती है, बीमारों को चंगा करती है, मृतकों को उठाती है, दर्शन देखती है और सब कुछ। ये अब कहाँ है? समझे, धोखा है, धनुष बिना तीर के। ओ ये ठीक बात है, परंतु आप देखिए जब मसीह आता है तो उसके मुंह से बिजली के तेज के समान तलवार निकलती है और ये निकलकर और उसके शत्रुओं को भस्म करती है और शैतान को निकाल देता है। ये हर चीज को काट डालता है और वो आता है, उसका वस्त्र लहू में डूबा है और उसकी जांघ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन आमीन। यहाँ वो आता है अपनी सेना के साथ जो स्वर्ग से आ रही है। वो सफेद घोड़े पर सवार, वो पृथ्वी पर सारे समय रहा, वो मसीह विरोधी से बदल जाएगा। वो ये करता है और झूठा भविष्यद्वक्ता हो जाता है। देखिए पहले वो मसीह विरोधी से आरंभ करके वो आत्मा, तब वो झूठे भविष्यद्वक्ता में बदल जाता है, तब बाद में वो शैतान निकाला जाता है, तब वो शैतान का अवतरित हो जाता है। तीन अवस्थाएं, पहले वो एक शैतान है आरंभ से, शैतान की आत्मा, फिर वो एक झूठा भविष्यद्वक्ता हो जाता है, झूठी शिक्षाओं का शिक्षक, अगली चीज वो अपने में ही शैतान होकर आता है अवतरित, समझे, वहाँ वो है। और इसी समय में शैतान स्वर्ग से गिराया जाता है और मनुष्य में अवतरित हो जाता है, पवित्र आत्मा ऊपर जाता है और ये नीचे मनुष्य में अवतरित हो जाता है। आमीन। ओह प्रभु क्या ही समय है। कल रात्रि प्रभु चाहेगा तो दूसरी मोहर, आप उससे प्रेम करते हैं? अब आप इसका विश्वास करते हैं? आप जरा टेप को बंद कर दें, अब मैं इससे सुनने जा रहा हूँ। आप ये जानते हैं, देखिए, परंतु मैं आशा करता हूँ कि भाई मैं आपको कुछ बता दूँ। मुझे अब मालूम पड़ा कि क्यों एक बार मेरे जीवन में क्यों वो आत्मा सदा संस्थागत के विरोध में मुझे चेतावनी देता रहा। मैं प्रभु परमेश्वर का आभारी हूँ कि मुझे ये चीज दिखाई। मैं जानता हूँ कि ये सत्य है, ये है, यही प्रकट किया गया। ये यहाँ युगों में होते हुए सवारी करता है और ये यहाँ बाहर आता है और स्वयं का प्रदर्शन यहाँ करता है, जितना सिद्ध हो सकता है उतना। देखिए ये वो है, अब हमने इस पर धोखा नहीं खाया, अब आपकी आंखें खुल गई हैं। इस प्रकार की चीज से दूर रहो और अपने पूरे हृदय से प्रभु से प्रेम करो और ठीक उसके संग बने रहो। जी हाँ श्रीमान, बाबुल से बाहर निकल आओ। तीन बातें वचन से प्रमाणित हुई, चित्र के द्वारा दिखाया, आत्मा के कामों के द्वारा प्रकट हुआ, प्रमाणित किया कि ये वचन है, होने पाए। वचन इन रुमालों पर आए, प्रभु बीमारों को चंगा करे, हर बीमार को जो यहाँ उपस्थित है चंगा करे प्रभु। और वे जो बाहर जिन्होंने लिखा है, फोन किया, पिता इस घड़ी में एक और चंगाई है जिसे अभी किया जाना है और हम चंगाई सभा में बढ़ रहे हैं, परंतु प्रभु ये वो प्राण है, हम चाहते हैं कि ये अनुक्रम में हो प्रभु और इन चीजों को आना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अब आप इन वचनों को लेंगे जो कि कहे गए हैं और लोगों के लिए वास्तविक कर देंगे। प्रभु ये इन्हें देखने दें, समय की तकलीफ होते हुए और पिता आप जानते हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुत कुछ कह दिया गया है कि पवित्र आत्मा इसे लेगा और इसे हृदयों में प्रकट करेगा। वे जो लिख रहे हैं उन वचनों को होने पाए ये अध्ययन करें, वे जो टेप बना रहे हैं या टेप सुन रहे हैं वे इसका अध्ययन करने पाए। अब वे इसमें अपना अनुवाद ना डालें, बस वचन का अध्ययन करें। पिता इसे ग्रहण करें यीशु के नाम में। मैं सबको आपको समर्पित करता हूँ और आपकी महिमा के लिए आमीन। आमीन। ओ धन्यवाद। ओ यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जो उसे क्षमा में ना जानता हो तो अब कर ले ये सीधी कठोर फटकार को सुनते हुए। यदि आप कभी समीप आने की आशा करते हैं तो इसे अब कर लें, क्योंकि इसके बाद के दिन क्या हो यदि वो मोहर का टूटना हो, क्या हो यदि वो सरदूत जो यहाँ भेजा गया जो मुझे धमाके में पृथ्वी पर से उठा दिया उस दिन वहाँ पीछे खड़ा हुआ था जब तीन गवाहियाँ यहाँ पास ही खड़ी हैं, जो कि मैंने जाने से पहले आपको बता दिया था कि एक धमाका होगा जो लगभग मुझे ऊपर उठा देगा, और मैं 7 स्वर्गदूतों के द्वारा ऊपर उठा लिया गया और पूर्व की ओर से आए ऐसी चीज की जो मुझे भूमि पर से हिला दिया। क्या ये ठीक बात है भाई नॉर्मन, भाई फ्रेड सॉथमैन जो मेरे साथ वहाँ खड़े हुए थे जब ये टूसान के ऊपर घटित हुआ और वहाँ बैठे हुए अपने कपड़ों पर से गोखरू निकाल रहा था ठीक जैसे दर्शन ने कहा था, और ये दक्षिण था टूसान की ओर। यदि ये सही है तो अपना हाथ उठाएं। भाई फ्रेड, भाई नॉर्मन वहाँ वे हैं। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं ताकि लोग आपको देख सकें कि जहाँ एक गवाही है। मैंने इस प्रकार की बात कभी नहीं सुनी अपने जीवन में, और तुरंत ही उन्होंने शिकार नहीं किया पूरे दिन। अगले दिन मैंने फ्रेड से विनती की, उसे ये नहीं मालूम था। मैंने उसे विनती करी कि जाकर शिकार करे, कहता रहा करो करो, परंतु उसने कहा, उसने मुझे पहले बताया वो इसे नहीं करेगा। अब तुम पूर्व की ओर जा रहे हो और वे 7 स्वर्गदूत, पहला धमाका वो खुल गई। जी हाँ, क्या हो यदि ये है, हम अंतिम घड़ी में हैं, समझे। मैं प्रेम, आइए उसकी आराधना करें।
मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया।
आइए खड़े हो जाएं।
और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी के वृक्ष पर।
आइए अपने हृदयों को अब साफ करें भाइयों, जैसे कि हम अपने सिरों को झुकाते हैं। मेरी बहनों, मैंने आप लोगों से बुरी तरह से बात की, परंतु मैंने ईश्वरीय प्रेम में होकर ये किया है। ये मैंने किया है क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। लंबे बाल रखने और वेशभूषा और सही व्यवहार, मैंने ये ईश्वरीय प्रेम के कारण किया है। आइए अब अपने विवेक को शुद्ध करें, जबकि परमेश्वर का निरंजक है। प्रातः हो सकता है बहुत देर हो जाए, वो आगे बढ़ जाए, ये चीज इस प्रकार से आ रही है भाइयों। हो सकता है कि ये बिचवाई के कार्य स्थल का अंत हो, क्या आपने कभी इस विषय में सोचा। भाई मैं नहीं जानता कि ये है, मैं नहीं कहता कि ये है, परंतु क्या हो यदि ये हो, इस विषय में क्या है, फिर कोई और छुटकारा नहीं, ये समाप्त हो गया। उस समय मैं आशा करता हूँ कि ये नहीं हुआ, परंतु संभावना है कि ये है।
मैं उसे प्रेम करता हूँ, मैं
प्रभु हमें शुद्ध कर दें।
उसे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया, और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी के वृक्ष पर।
प्रभु का नाम धन्य हो, परमेश्वर को महिमा मिले। मुझे ये मीठा अनुभव अच्छा लगता है क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते? बस पवित्र आत्मा जैसे आपको चारों ओर से नहा रहा हो, इसके साथ साथ घूम रहा है, और ओ कैसा शानदार, ओ उसके अनुग्रह पर सोचें।
मैं उसे प्रेम करता क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा। उस कैलवरी के वृक्ष पर
मित्र इसे ना भूलें, अपने साथ इसे घर ले जाएं, इसके संग बने रहें, इसे अपने तकिए पर रख लें, इसे ना भूलें, इसके संग बने रहें। परमेश्वर अब आपको आशीष दे। भाई नेविल, आपके पास्टर।